आगे सबक देखिए भाई। قال والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا ولا يبقى دائمة إلا بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء ولأن الخراج بالزمان। भाई गुज़श्ता सबक में साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि मुशा चीज का वक्फ जो है उसमें साहिबैन का आपस में इख्तिलाफ है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुशा हिस्से का वक्फ जायज है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुशा का वक्फ जायज नहीं। मैंने आपको बतलाया था कि मुशा का माना है फैला हुआ। बाज़ औकात एक जमीन के अंदर दो आदमियों की शिरकत होती है तो हर एक का हिस्सा उस जमीन में फैला हुआ होता है। मसलन जैद और अमर ने मिलकर जमीन खरीद ली तो अब इस जमीन के अंदर निसफ हिस्सा जैद का है और निसफ हिस्सा अमर का है, लेकिन जब तक ये दोनों तकसीम नहीं करते तो उस वक्त तक दोनों का हिस्सा पूरी जमीन के अंदर फैला हुआ है। जमीन का कोई एक जुज भी ऐसा नहीं कि उसके बारे में हम कह सकें ये जैद का हिस्सा है या हम उसके बारे में कह सकें कि यह अमर का हिस्सा है, बल्कि उस जमीन का कोई भी हिस्सा ले लें उसमें जैद का भी हिस्सा है और अमर का भी हिस्सा है। उस जमीन का एक इंच टुकड़ा भी लेंगे तो उसमें जैद का भी हिस्सा और अमर का भी हिस्सा है। तो जैद और अमर दोनों का हिस्सा जमीन के अंदर फैला हुआ है तो इसको कहते हैं मुशा भाई। अब जैद अपने मुशा हिस्से को वक्फ करना चाहता है तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुशा का वक्फ भी जायज है, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, मुशा चीज का वक्फ जायज नहीं। वो फरमाते हैं कि जैसे हिबा और सदका है भाई, याद रखो ये हिबा और सदका इन दोनों के अंदर कब्जा जरूरी है। सिर्फ जुबान से कहने से ना हिबा पूरा होता है और ना सदका। मसलन मेरे सामने किताब पड़ी है, मैंने जैद से कहा है कि ये किताब मैंने आपको हिबा कर दी, तो सिर्फ मेरे कहने से जैद इसका मालिक नहीं बनेगा, बल्कि जब जैद इस पर कब्जा कर लेगा अब जैद मालिक बन जाएगा। इसी तरह सदका भी है, सिर्फ जुबान से कहने से फकीर जो है दिरहम और दीनार का मालिक नहीं बनेगा, बल्कि जब वो दिरहम आप फकीर के हवाले कर देंगे और फकीर उन पर कब्जा कर लेगा फिर वो इन दिरहम और दीनार का मालिक बन जाएगा। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह हिबा और सदका इनके अंदर कब्जा शर्त है और मुशा चीज का न हिबा जायज और न सदका जायज है। मुशा चीज का न हिबा जायज और न सदका। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की कि जैद और अमर ने मिलकर जमीन खरीदी है, अब जैद अपना मुशा हिस्सा जो है वो किसी को हिबा करना चाहता है, तोहफे के तौर पर देना चाहता है, या किसी गरीब को अपना हिस्सा सदका करना चाहता है, तो याद रखो ये जायज नहीं है, इसलिए क्योंकि हिबा और सदके में कब्जा जरूरी है और जब तक हिस्सा अलग नहीं होगा उस वक्त तक फकीर के लिए या महूब लहू के लिए उस पर पूरी तरह कब्जा करना मुमकिन नहीं है भाई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह मुशा चीज का हिबा और सदका जायज नहीं है, इसी तरह मुशा चीज का वक्फ भी जायज नहीं है भाई, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा चीज का वक्फ भी जायज है भाई। लेकिन अगर कोई चीज इतनी छोटी है कि उसके अंदर तकसीम मुमकिन ही नहीं है, यानी अगर तकसीम किया जाए तो वो उसका कोई फायदा ही बाकी नहीं रहता, जैसे हमाम है या पंचक्की है, अब दो आदमियों की शिरकत है हमाम के अंदर या पंचक्की के अंदर, अब हमाम तो छोटा सा होता है, अगर उसको तकसीम करेंगे फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा, वो तो बेकार हो जाएगा। इसी तरह पंचक्की भी छोटी सी होती है, अगर उसमें भी तकसीम कर देंगे तो वो तो किसी काम की नहीं रहेगी, उसका तो फायदा ही खत्म हो जाएगा। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वैसे तो मुशा चीज जो है उसके अंदर जिस तरह हिबा और सदका नहीं जायज, इसी तरह उसका वक्फ भी जायज नहीं। लेकिन अगर कोई चीज इतनी छोटी है कि उसे तकसीम ही नहीं किया जा सकता तो उसके अंदर फिर हिबा भी जायज और सदका भी जायज, क्योंकि वहां मजबूरी है, तो वहां पर उस छोटी सी चीज के अंदर मुशा हिस्से का हिबा भी जायज और सदका भी जायज, और जब इस छोटी चीज में मुशा का हिबा और सदका जायज है तो इसके अंदर वक्फ भी जायज होगा। तो हासिल कलाम यह कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वैसे तो मुशा का वक्फ जायज नहीं, लेकिन अगर वह चीज इतनी छोटी है कि तकसीम नहीं हो सकती तो फिर उसके अंदर मुशा का वक्फ भी जायज है। और नीज फिर आगे साहिब हिदाया ने बतलाया कि मस्जिद और कब्रिस्तान की जमीन उसके अंदर बिल इत्तेफाक जो है मुशा का वक्फ जायज नहीं है। हत्ता कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह जो मुशा के वक्फ को जायज कहते हैं वो भी फरमाते हैं कि मुशा का वक्फ बतौर मस्जिद के या बतौर कब्रिस्तान के दुरुस्त नहीं है। वजह यह कि जब तक यह मस्जिद में या कब्रिस्तान में किसी की शिरकत रहेगी तो यह तो खालिस अल्लाह के लिए नहीं हो सकता, जब खालिस अल्लाह के लिए नहीं हो सकता तो इनका वक्फ भी जायज नहीं है। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा का वक्फ जायज नहीं, लेकिन इससे मुराद शुयूए असली है। शुयूए असली वो है कि जिस वक्त किसी चीज को वक्फ किया जाए उस वक्त ही शुयूए मौजूद था, उस वक्त ही वो हिस्सा मुशा था भाई। तो याद रखें ये जो शुयू है ये दो किस्म पर है, एक शुयू असली है और एक शुयू तारी है। शुयू असली वो है जो वक्फ करते वक्त हो या जो हिबा और सदका करते वक्त मौजूद हो, इसको कहते हैं शुयू असली। और एक वो शुयू है जो बाद में आ जाए तो उसको शुयू तारी कहते हैं, यानी वो शुयू पेश आया है। तो याद रखो ये जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुशा का वक्फ जायज नहीं, इससे मुराद शुयू असली है जो वक्फ के वक्त ही मौजूद हो। और अगर ये शुयू बाद में तारी हुआ है फिर इसकी वजह से वक्फ बातिल नहीं होगा। तो लिहाजा वो फरमाते हैं अगर एक शख्स ने अपना बाग या जमीन वक्फ की और बाद में इसके अंदर किसी और का हिस्सा निकल आया और उसका हिस्सा मुशा है पूरे बाग में फैला हुआ है तो इस किस्म के बाग का वक्फ जो है वो बातिल है, क्योंकि मालूम हुआ जिस वक्त इसने बाग को वक्फ किया था उस वक्त ही शुयू मौजूद था भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर किसी मुअय्यन हिस्से के अंदर किसी का इस्तेहकाक निकल आए, मसलन जैद ने अपना बाग वक्फ किया और फिर बाद में उसका एक मुस्तहिक निकल आया और उसने दावा कर दिया कि इस बाग का जो फुला किनारा है, फुला किनारे की जो जमीन है वो मेरी है, तो अब देखो एक मुअय्यन हिस्से का इस्तेहकाक निकला है तो अब यहां शुयू नहीं है, लिहाजा इस सूरत में वक्फ बातिल नहीं होगा। तो हासिल कलाम ये कि जिस तरह हिबा और सदका इन में शुयू असली हो तो हिबा और सदका जायज नहीं, और हिबा और सदका के अंदर अगर शुयू तारी आ जाए तो उसकी वजह से हिबा और सदके पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वक्फ के अंदर भी अगर शुयू असली हुआ तो वो वक्फ बातिल है, और अगर वो शुयू तारी हुआ बाद में पेश आया तो उसकी वजह से वक्फ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे हिबा और सदके पर शुयू तारी का कोई असर नहीं पड़ता। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि तरफैन रहिमहुमल्ला के नजदीक यह जो वक्फ किया जाता है इसकी आखिर ऐसी जिहत पर हो कि वह खत्म होने वाली ना हो, मुनकते होने वाली ना हो। अगर कोई चीज वक्फ की लेकिन इस तौर पर कि उसका आखिर मुनकते होने वाला है फिर यह वक्फ जायज नहीं। मसलन एक आदमी ने अपना बाग वक्फ कर दिया कि ये बाग मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूं और आज के बाद इसकी आमदनी जैद पर खर्च की जाए, तो अब देखो जैद जो है जैद तो हमेशा रहने वाला नहीं, कुछ साल तक जिंदा रहेगा फिर उसका इंतकाल हो जाएगा। मालूम हुआ इस शख्स ने बाग को ऐसे तरीके पर वक्फ किया है कि इसकी आमदनी की जो जिहत बयान की है वो मुनकते होने वाली है, कोई एक वक्त आएगा वो आमदनी खर्च करने की जो जिहत है वो खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा तरफैन फरमाते हैं ये वक्फ जायज नहीं है। वक्फ मुअब्बद होना चाहिए, वक्फ मुअब्बद होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। मसलन एक शख्स कहता है कि मेरे इस बाग की आमदनी जैद पर खर्च की जाए और जैद के इंतकाल के बाद फिर फुकारा पर यह आमदनी खर्च की जाए, तो अब देखो उसने ऐसी जिहत बयान कर दी जो मुनकते होने वाली नहीं है भाई। इसकी आमदनी को जैद पर खर्च किया जाएगा और जब जैद का इंतकाल हो जाएगा फिर फुकरा पर खर्च किया जाएगा और यह जिहत खत्म होने वाली नहीं, फुकरा पर हमेशा खर्च किया जा सकता है। तो लिहाजा तरफेन फरमाते हैं कि वक्फ का जो आखिर है वो ऐसी जिहत होनी चाहिए जो मुनकते होने वाली न हो। वो फरमाते हैं वजह यह है कि वक्फ जो है यह ताबीद का तकाजा करता है कि यह मुअब्बद होना चाहिए, हमेशा के लिए होना चाहिए। वजह यह कि वक्फ जो है इसके अंदर जवाल मिल्क ला इला मालिक होता है, वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है और कोई और भी इसका मालिक नहीं बनता, और जवाल मिल्क तो हमेशा के लिए होता है, लिहाजा यह वक्फ भी हमेशा के लिए होना चाहिए। वक्फ भी तकाजा करता है कि यह भी हमेशा के लिए होना चाहिए। भाई इस पर मैंने इश्काल जिक्र किया था कि इमाम साहब के नजदीक तो वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म ही नहीं होती, तो फिर यहां यह कहने का क्या मतलब है कि वक्फ जो है उसके अंदर जवाल मिल्क होता है। इमाम साहब के नजदीक तो जवाल मिल्क नहीं होता, वाकिफ की मिल्कियत वक्फ पर से खत्म नहीं होती। तो मैंने जवाब दिया था कि या तो यह महमूल है इमाम साहब की दूसरी रिवायत पर, इमाम साहब से एक रिवायत इमाम मोहम्मद रहमला के मुआफिक भी है कि वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है, या इसको इमाम साहब की पहली रिवायत पर ही महमूल कर लें, लेकिन उस सूरत पर जब इमाम साहब के नजदीक भी वक्फ पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है और वो जब हाकिम उसका फैसला कर दे, जब हाकिम उसका फैसला कर दे। आपको साहिब कुदूरी ने बतलाया था कि जब वाकिफ वक्फ के लाजिम होने का फैसला कर दे तो फिर इमाम साहब के नजदीक भी वाकिफ की मिल्कियत वक्फ पर से खत्म हो जाती है, तो उस सूरत पर महमूल कर लेंगे भाई। तो हासिल कलाम यह कि तरफेन रहमहुमल्लाह के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना जरूरी है, मगर मुअब्बद जिहत बयान न की तो यह वक्फ ही बातिल है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह उनके नजदीक अगर वक्फ के लिए कोई मुअब्बद जिहत बयान न की जाए फिर भी वक्फ सही है, कोई मुअब्बद जिहत बयान न की जाए यानी हमेशा रहने वाली कोई जिहत बयान न की जाए फिर भी वक्फ सही है। मसलन एक आदमी ने अपना बाग वक्फ कर दिया कि इसकी आमदनी जैद पर खर्च की जाए, तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक अगरचे इस वक्फ की ऐसी जिहत बयान की है जो मुअब्बद नहीं लेकिन फिर भी यह वक्फ सही है। तो अब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के इस कहने का क्या माना कि वक्फ की जिहत अगर मुअब्बद बयान न की जाए फिर भी वक्फ सही है, तो बाज फुकहा फरमाने लगे कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का मुअब्बद होना जरूरी ही नहीं है। वजह यह है कि वक्फ के जरिए सवाब मकसूद है, अल्लाह का कुर्ब मकसूद है कि इंदल्लाह इंसान के दराजात बढ़ते चले जाएं, और यह उस वक्फ में भी हो सकता है जो कुछ वक्त के लिए हो और उस वक्फ में भी हो सकता है जो हमेशा के लिए हो, तो दोनों के जरिए सवाब भी मिलता है और अल्लाह का कुर्ब भी मिलता है। हां अलबत्ता जो मुअब्बद होगा उसमें सवाब ज्यादा होगा और उसमें अल्लाह का कुर्ब ज्यादा मिलेगा, लेकिन बहरहाल मुअक्कत भी हो, कुछ वक्त के लिए भी अगर वक्फ हो फिर भी सवाब तो मिलेगा, अल्लाह का कुर्ब तो मिलेगा। तो यह बात फुकहा फरमाते हैं वक्फ मुअब्बद न हो फिर भी जायज है। तवज्जो है, ये बाज़ फुकहा की तकरीर चल रही है। वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल का ये माना बयान करते हैं कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने जो जिक्र किया कि वाकिफ अगर वक्फ की कोई ऐसी जिहत बयान कर दे जो मुनक़ते होने वाली है फिर भी वक्फ जायज है, तो बाज़ फुकहा फरमाते हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल का मतलब यह है कि वक्फ मुअब्बद होना जरूरी नहीं है। लेकिन दीगर फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, वक्फ का मुअब्बद होना हमारे तीनों अइमा के नजदीक जरूरी है। हां सिर्फ फर्क इतना है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक उस वक्फ के मुअब्बद होने को लफ्जों में जिक्र न भी किया जाए फिर भी कोई हरज नहीं, वो मुअब्बद ही रहेगा, रहेगा मुअब्बद ही अगर से लफ्जों में जिक्र न किया जाए। वजह यह कि वक्फ का अपना लफ्ज जब जिक्र कर दिया या सदके का लफ्ज जिक्र कर दिया कि मैं ये बाग वक्फ करता हूं या ये बाग मैं सदका करता हूं, तो वक्फ और सदका होता ही हमेशा के लिए है, लिहाजा इस लफ्ज से ही हमेशगी का पता चल गया, दवाम का पता चल गया, लिहाजा इसको अलहदा लफ्जों में जिक्र करने की जरूरत नहीं है भाई। और साहिब हिदाया फरमाते हैं कि यही कौल सही है कि वक्फ का मुअब्बद होना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी शर्त है अगरचे वाकिफ इसको लफ्जों में जिक्र न करे। चुनाचे इसीलिए साहिब कुदूरी ने भी मतन में जिक्र फरमाया वसार बादहा लिल फुकरा इल्लम युसम्मिहिम कि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ऐसी जिहत जिक्र कर दी जाए जो मुनकते होने वाली है तो भी वक्फ सही है, और उस जिहत के मुनकते हो जाने के बाद वो वक्फ जो है आम फुकारा के लिए हो जाएगा। तो साहिबे कुदूरी की इबारत से भी पता चल रहा है कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ मुअब्बद होगा अगरचे उसको जिक्र न भी किया जाए, जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वक्फ का मुअब्बद होना शर्त है, वक्फ का मुअब्बद होना शर्त है। वक्फ के अंदर मनाफिया और आमदनी जो है उसका सदका किया जाता है, और यह सदका कुछ वक्त के लिए भी हो सकता है और हमेशा के लिए भी हो सकता है, लिहाजा जरूरी है कि हमेशा होने को वो लफ्जों में जिक्र करे। अगर वो हमेशा होने को लफ्जों में जिक्र नहीं करता तो उसको मुअब्बद करार नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आ गई। और नीज फिर मैंने आपको बतलाया था कि मालूम हुआ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ के सही होने के लिए तीन शर्तें हैं। भाई एक शर्त तो पहले जिक्र की कि वो वक्फ किसी मुतवल्ली के कब्जे में दिया जाए और वो इस पर कब्जा कर ले। दूसरी शर्त के वक्फ मुशा नहीं होना चाहिए, मुशा का वक्फ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जायज नहीं है। और तीसरी शर्त यह कि वक्फ जो है उसका आखिर ऐसा हो जो मुनकते होने वाला ना हो। तो ये तीन शर्तें हैं वक्फ के सही होने के लिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। भाई और उसके बाद साहिब हिदाय ने आपको बतलाया कि किन चीजों का वक्फ सही है और किन चीजों का वक्फ सही नहीं है। बतलाया कि ये जो गैर मनकूली जायदाद है जैसे जमीन है, मकान है, फैक्ट्री है, दुकान है, बाग है, खेत है, ये हमेशा रहने वाली चीजें हैं, इनके अंदर तो बिल इत्तेफाक वक्फ जायज है क्योंकि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से मनकूल है। बहुत से सहाबा ने अपनी जायदादें वक्फ फरमाई थी, हत्ता के चारों खुलफाए राशिदीन ने भी अपनी जायदादें वक्फ की हैं और दीगर सहाबा ने भी। तो गैर मनकूली जायदाद जो है उसमें तो बिल इत्तेफाक वक्फ जायज है हमारे तीनों अइमा के नजदीक। अलबत्ता मनकूली चीजों में वक्फ जायज है या नहीं, तो इमाम साहब के नजदीक मनकूली चीजों का वक्फ जायज नहीं है मुतलकन। कोई भी मनकूली चीज हो उसका वक्फ जायज नहीं है। वजह यह क्योंकि अभी पीछे जिक्र किया कि वक्फ का मुअब्बद होना जरूरी है, और मनकूली चीज तो हमेशा नहीं रहती, जितनी मर्जी आला चीज हो कुछ सालों के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगी। तो मनकूली चीज मुअब्बद नहीं, लिहाजा उनका वक्फ भी जायज नहीं। तो यह इमाम साहिब का कौल है। तो इमाम साहब के नजदीक मनकूली चीज का वक्फ अलल इतलाक जायज ही नहीं है, यानी किसी भी मनकूली चीज का वक्फ जायज नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मनकूली चीजों में से घोड़ा और असलहा जो है इनका वक्फ जायज है। वजह यह कि इनका जिक्र अहादीस मुबारका में आता है, और नीज वो फरमाते हैं कि गैर मनकूली चीज का वक्फ तो बिल इत्तेफाक जायज है, तो इस गैर मनकूली जायदाद के ताबे करते हुए मनकूली चीजों का वक्फ भी उसके साथ जायज होगा। मसलन एक आदमी अपना खेत वक्फ करता है और खेत के साथ जो है वो उसके साथ बैल वगैरह हैं या मशीनरी है या और खेत से मुतालिक मनकूली चीजें हैं उनको भी वक्फ करता है, तो असल वक्फ तो खेत का हुआ और खेत मुअब्बद है। तवज्जो है, वो काश्त वाली जमीन वो हमेशा रहने वाली है, तो असल वक्फ जो है वो उस काबिले काश्त जमीन का हुआ और बाकी मनकूली चीजें जो हैं वो इसके ताबे होकर वो भी वक्फ हो जाएंगी, उनमें भी वक्फ सही हो जाएगा। चुनाचे वो फरमाते हैं कि बाज औकात एक चीज के अंदर एक हुक्म कसदन तो साबित नहीं हो सकता लेकिन तबअन उसके अंदर एक हुक्म साबित हो जाया करता है। जैसे पानी की बारी है, मैंने बतलाया कि मसलन एक छोटी सी नहर आ रही है, जैद भी उससे अपनी जमीन सैराब करता है और अमर भी उससे अपनी जमीन सैराब करता है। मालूम हुआ इस पानी की बारी के अंदर जैद का हिस्सा है। अब जैद अपनी पानी की बारी बेचना चाहता है तो यह उसके लिए जायज नहीं, क्योंकि यह तो एक हक का नाम है, यह कोई वजूदी चीज नहीं है, लिहाजा इसकी बैअ जायज नहीं। तो लिहाजा पानी की बारी की बैअ कसदन जायज नहीं। हां जमीन के ताबे इसकी बैअ जायज है कि जैद अपनी जमीन बेचता है तो उसके ताबे इस पानी की बारी को भी बेच देता है, तो यह जायज है। या इसी तरह इमारत जो है, जमीन के ऊपर कोई इमारत बनाई जाए, अब यह इमारत तो मनकूली चीज है, इसको यहां से उखाड़कर मलबे की सूरत में दूसरी जगह ले जाया जा सकता है कि इस इमारत को गिरा दिया जाए और फिर मलबे को दूसरी जगह ले जाएं, तो इमारत मनकूली चीज है और सिर्फ इमारत के अंदर वक्फ जायज नहीं, लेकिन जब उस जमीन को वक्फ किया जाए जिसके अंदर यह इमारत मौजूद है तो जमीन के ताबे होकर यह इमारत भी वक्फ हो जाएगी। तो हासिल कलाम यह कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक असलहे और घोड़े का वक्फ भी जायज है और गैर मनकूली चीज के ताबे होकर मनकूली चीज का वक्फ भी जायज है, और यही एक कौल है इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का भी। जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से एक और रिवायत है कि उसके मुताबिक इन चीजों में भी वक्फ जायज है जो अभी जिक्र हुई, और इनके अलावा ऐसी मनकूली चीजें हैं कि उनमें लोगों का तआमुल जारी है वक्फ करने का, मसलन जनाजे की चारपाई लोग वक्फ कर देते हैं, या जनाजे के ऊपर जो कपड़ा डालते हैं वो वक्फ कर देते हैं, या कोई औजार वगैरह लोग वक्फ कर देते हैं बाज़ इलाकों के अंदर, या इसी तरह कुरान जो है उसको लोग मस्जिदों में लाते हैं और उसको वक्फ कर देते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जिनके अंदर लोगों का तआमुल जारी है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का दूसरा कौल जो है उसके मुताबिक जिन मनकूली चीजों के अंदर लोगों का तआमुल हो उनको वक्फ करने का, उनका वक्फ भी जायज है। उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कौल जिक्र फरमाया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर मनकूली चीज का वक्फ जायज है, बस उसमें दो शर्तें होनी चाहिए। एक तो यह कि उसके असल को बाकी रखते हुए उससे नफा उठाना जायज हो, उसके असल को बाकी रखते हुए उससे नफा उठाना जायज हो, और दूसरी शर्त यह कि उसको बेचना भी जायज हो। देखिए मैंने इस मिसाल जिक्र की थी कि बास चीजें ऐसी हैं कि उनसे जब आप नफा उठाते हैं तो वो बाकी नहीं रहती, मसलन दिरहम और दीनार से आप तभी नफा उठा सकते हैं जब आप इस दिरहम और दीनार को खर्च करेंगे, तो दिरहम और दीनार जो है आपके हाथ से निकल गए, खर्च हो गए, खत्म हो गए, फिर ही आपने इससे फायदा उठाया। या इसी तरह जो खाना हम रोजाना खाते हैं, इस खाने से भी हम जब नफा उठाते हैं तो इसी सूरत में नफा उठाते हैं कि इसको खा लिया जाए, तो जब आप उस खाने को खाते हैं तो वो खाना खत्म हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनसे नफा उठाया जाए तो वो खत्म हो जाती हैं, वो बाकी नहीं रहती, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके बाकी रहते हुए उनसे नफा उठाना मुमकिन है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, अब देखो कपड़ों से आप नफा उठा रहे हैं लेकिन ये बाकी हैं, या आप किसी सवारी पर सवार होते हैं तो आप सवारी से नफा उठा रहे हैं और वो सवारी बाकी है, गाड़ी पर आप सफर करके आ गए, गाड़ी अभी भी मौजूद है, आपने नफा भी उठा लिया और गाड़ी अभी भी मौजूद है। तो इस तरह बास चीजें जो हैं उनसे नफा उठाया जाए फिर भी वो बाकी रहती हैं भाई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर मनकूली चीज में वक्फ जायज है बशर्ते कि उसके अंदर दो शर्तें पाई जाएं, एक तो यह कि उसे नफा उठाना जायज हो उसके बाकी रहते हुए, और दूसरा यह कि उसको बेचना जायज हो। वो फरमाते हैं जब एक मनकूली चीज के अंदर जब ये दोनों शर्तें पाई जाएंगी तो वह आकार की तरह हो गया, यानी गैर मनकूली जायदाद की तरह, जैसे गैर मनकूली जायदाद से नफा उठाया जाता है और वह बाकी रहती है। आप दुकान से नफा उठा रहे हैं और दुकान बाकी है भाई, आप खेत से नफा उठा रहे हैं और खेत बाकी है भाई, आप बाग से नफा उठा रहे हैं और बाग बाकी है भाई, आप घर के अंदर रिहाइश रखते हैं, आप घर से फायदा उठा रहे हैं और घर बाकी है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जैसे आकार जो है उससे फायदा उठाया जाता है और वह बाकी रहती है और उसको बेचना भी जायज है, इसी तरह मनकूली चीज के अंदर भी जब यह दोनों सिफतें पाई जाएंगी तो वह भी आकार की तरह हो जाएगा, और आकार में तो बिल इत्तेफाक वक्फ जायज है तो उस मनकूली चीज में भी वक्फ जायज हो जाएगा। और नीज वो फरमाते हैं कि ये मनकूली चीज जो है घोड़े और असलहे की तरह हो जाएगी, घोड़े और असलहे से नफा उठाया जाता है और नफा उठाने के बाद भी ये बाकी रहते हैं और नीज इनको बेचना भी जायज है। तो और मनकूली चीजें जो हैं उनमें भी जब ये दो सिफतें पाई जाएंगी तो वो भी घोड़े और असलहे की तरह हो गई, और घोड़े और असलहे का वक्फ तो जायज है लिहाजा उन मनकूली चीजों का वक्फ भी जायज होगा। लेकिन हमारे नजदीक हर मनकूली चीज में वक्फ जायज नहीं, एक तो गैर मनकूली जायदाद के अंदर वक्फ जायज है और फिर घोड़े और असलहे में वक्फ जायज है क्योंकि इसके बारे में हदीस मुबारक आई हैं, और नीज चंद मनकूली चीजें वो हैं जिनमें लोगों का तआमुल हो तो उसके अंदर भी वक्फ जायज है और मनकूली चीजों में वक्फ जायज नहीं। तो हम कहते हैं कि आप बाकी मनकूली चीजों को आकार पर कयास नहीं कर सकते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना कि मनकूली चीजों में दो सिफतें पाई जाएं तो ये किसकी तरह हो गई, आकार की तरह, गैर मनकूली जायदाद की तरह, हम कहते हैं नहीं, आकार तो मुअब्बद है, हमेशा रहने वाली है, और मनकूली चीज जो है वो हमेशा रहने वाली नहीं, तो दोनों में फर्क है, लिहाजा आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते। नीज हम कहते हैं कि घोड़े और असलहे पर भी आप कयास नहीं कर सकते, क्योंकि घोड़ा और असलहा जो है उनका जिक्र तो हदीस मुबारका में है, जबकि और मनकूली चीजों का जिक्र तो हदीस मुबारका में नहीं। और कुछ चीजों के अंदर हम जो है लोगों के तआमुल की वजह से वक्फ को जायज करार देते हैं, और हर मनकूली चीज के अंदर तो लोगों का तआमुल नहीं है। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदायत ने आपको बतलाया कि जब वक्फ सही हो जाए यानी लाजिम हो जाए तो फिर ना उसका बेचना जायज है और ना किसी दूसरे को उसका मालिक बनाना जायज है, इल्ला ये कि वो वक्फ जो है मुशा हो, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक तो उसके अंदर भी वक्फ जायज होता है। तो अब अगर एक शख्स ने अपने मुशा हिस्से को वक्फ कर दिया और उसका शरीक अब तकसीम का मुतालबा करता है कि अपना हिस्सा मेरे से अलग कर दो, जैद और अमर ने मिलकर जमीन खरीदी और जैद ने अपना हिस्सा वक्फ कर दिया, तो अब दूसरा शरीक जो है वो तकाजा करता है कि मेरा हिस्सा अलग कर दो। तो अब देखो जैद ने जो हिस्सा वक्फ किया वो तो पूरी जमीन के अंदर फैला हुआ था, पूरी जमीन में फैला हुआ था, तो अब यहां पर जब तकसीम करेंगे तो यहां मुबादला लाजिम आएगा, यानी यहां बेअ लाजिम आएगी, लेकिन फिर भी ये वक्फ जायज है। मैंने आपको बतलाया था जब भी एक चीज दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका हो और फिर जब वो उसको आपस में तकसीम करते हैं तो वहां इफराज भी होता है और मुबादला भी। इफराज का माना है अपना हिस्सा अलग करना, मुबादला का माना है दूसरे के कुछ हिस्से के साथ कुछ अपने हिस्से का मुबादला कर लेना। मसलन देखो जैद और अमर ने मिलकर 100 मन गंदुम खरीदी, 100 मन गंदुम खरीदी। अब ये जो गंदुम है ये दोनों के दरमियान मुश्तरका है, गंदुम के हर हर दाने में जैद का भी हिस्सा और अमर का भी हिस्सा है, गंदुम का एक दाना भी आप नहीं कह सकते ये सिर्फ जैद का है या ये सिर्फ अमर का है, बल्कि हर दाने में दोनों का हिस्सा है। अब दोनों आपस में इसको तकसीम करते हैं, आधी गंदुम जैद ले लेता है और आधी गंदुम अमर ले लेता है। अब देखो जैद के पास जो गंदुम आई है वो सारी जैद की नहीं थी, कुछ हिस्सा जैद का था और कुछ हिस्सा किसका था, अमर का था। इसी तरह अमर के पास जो गंदुम आई है वो सारी गंदुम अमर की नहीं थी बल्कि कुछ हिस्सा उसमें जैद का भी था भाई। तो यहां पर जब दोनों ने अपना हिस्सा अलग अलग किया तो इफराज भी पाया गया और मुबादला भी पाया गया। इफराज का क्या माना, अपना हिस्सा अलग करना। तो जैद ने जब अपना हिस्सा अलग किया तो इस हिस्से के अंदर कुछ हिस्सा तो था ही जैद का, तो इफराज पाया गया। जैद ने क्या किया है, अपना हिस्सा अलग किया है। अमर के हिस्से में जो गंदुम आई उसमें भी कुछ हिस्सा तो था ही अमर का, तो इफराज पाया गया कि अमर ने अपना हिस्सा अलग किया है, लेकिन साथ मुबादला भी पाया जा रहा है। जैद के हिस्से में जो गंदुम आई है उसमें तो कुछ हिस्सा अमर का था, और अमर के हिस्से में जो गंदुम आई है उसमें कुछ हिस्सा जैद का था। तो जैद के हिस्से में जो गंदुम आई है उसके अंदर जो अमर का हिस्सा बनता था वो जैद ने ले लिया, और बदले में अमर की गंदुम के अंदर जो जैद का हिस्सा बनता था वो जैद ने अमर को दे दिया। तो मुबादला भी पाया गया, इफराज भी पाया गया, जैद के हिस्से में जो गंदुम आई है कुछ तो थी ही जैद की, तो इफराज पाया गया कि जैद ने अपना हिस्सा अलग किया है। इफराज का माना समझ में आ रहा है, जुदा करना, जैद ने अपना हिस्सा अलग किया है, और मुबादला भी पाया गया कि कुछ हिस्सा तो अमर का था जो जैद ने ले लिया और बदले में अमर को वो हिस्सा दे दिया जो अमर की गंदुम में जैद का बनता था भाई। तो जब भी किसी चीज के अंदर शिरकत हो और उसको तकसीम किया जाए वहां इफराज भी होता है और मुबादला भी होता है, तवज्जो है। लेकिन याद रखो ये जो चीजें हैं ये दो किस्म पर हैं, कुछ को मिसलियात कहते हैं जिनका मिसल बाजार से मिल जाता है, और मिसलियात तीन चीजें हैं, मकीलात, मौजूनात और महदूदात मुतकारिबा। मकीला जिनको पैमाने में माप कर बेचा जाता है, जैसे दूध है और पेट्रोल है इनको एक पैमाने के अंदर भर कर बेचा जाता है तो इनको क्या कहते हैं, मकीलात। और जैसे कदीम जमाने में गंदुम जो है इसको भी एक पैमाने के अंदर माप कर बेचा जाता था, एक बर्तन होता था उसको भर कर बेचते थे कि मसलन एक कफीस जो है एक दिरहम का है, दो कफीस दो दिरहम के हैं भाई, तो इनको मकीलात कहते हैं जिनको पैमाने में माप कर बेचा जाता है। कुछ चीजों को वजन करके बेचा जाता है उनको मौजूनात कहते हैं, और कुछ चीजें जो हैं जो जिनको गिन कर बेचा जाता है जैसे अंडे हैं या जैसे बाज इलाकों में अखरोट जो है वो भी गिनकर बेचे जाते हैं, तो ये जो मादूदात हैं ये जिनको गिनकर बेचा जाता है तो ये मादूदात मुतकारिबा, ये भी मिसलियात में से हैं। तो मिसलियात तीन किस्म की चीजें हैं, मौजूनात, मकीलात और मादूदात मुतकारिबा, तवज्जो है। और इनके अलावा बाकी चीजें ज़वातुल क़ियम कहलाती हैं, यानी कीमत वाली। तो याद रखो जब भी एक चीज दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका हो और फिर उसको वो आपस में तकसीम करें तो हमेशा वहां इफराज भी होता है और मुबादला भी होता है। लेकिन अगर वो चीज जिसको आपस में तकसीम कर रहे हैं अगर वो मिसलियात में से है, जैसे गंदुम किस में से है, मिसलियात में से है, तो जैद ने और अमर ने गंदुम तकसीम कर ली तो यहां इफराज भी पाया गया और मुबादला भी। लेकिन मिसलियात के अंदर इफराज गालिब है, इफराज को गालिब करार दिया जाता है और यूं समझो इफराज हुआ है, मुबादला है ही नहीं। ये जो जैद के हिस्से में गंदुम आई है यूं समझो ये थी ही जैद की, जैद ने सिर्फ अपना हिस्सा अलग किया है, और अमर के हिस्से में जो गंदुम आई है वो थी ही अमर की, यहां कोई जैद का हिस्सा नहीं था। तवज्जो है, वैसे तो इफराज भी था और मुबादला भी, लेकिन मिसलियात में जब तकसीम की जाए तो इफराज को गालिब करार दिया जाता है और यूं समझा जाता है इफराज ही हुआ है, मुबादला हुआ ही नहीं है। जबकि ज़वातुल क़ियम के अंदर जब तकसीम की जाए, जैसे जमीन, जैद और अमर ने जमीन आपस में तकसीम कर ली तो अब यह जमीन ज़वातुल क़ियम में से है, तो इसके अंदर भी देखो जो जमीन का टुकड़ा जैद के हिस्से में आया उसमें कुछ हिस्सा था ही जैद का और कुछ हिस्सा अमर का था, और अमर के हिस्से में जो जमीन का टुकड़ा आया उसमें कुछ हिस्सा तो था ही अमर का और कुछ हिस्सा जैद का था। तो गोया जैद के हिस्से में जो जमीन आई है उसमें कुछ जैद का हिस्सा था और कुछ अमर का हिस्सा था, लेकिन जैद ने अमर का हिस्सा भी ले लिया और बदले में वो हिस्सा जो अमर की जमीन में जैद का बनता था वो उसने अमर को दे दिया। तो यहां पर भी इफराज भी है और मुबादला भी है, लेकिन ज़वातुल क़ियम के अंदर जब तकसीम की जाए तो वहां मुबादले को गालिब करार दिया जाता है। तो यूं समझा जाता है यहां मुबादला हुआ है, तो मिसलियात में तकसीम हो तो उसको इफराज समझा जाता है कि मुबादला हुआ ही नहीं, और ज़वातुल क़ियम के अंदर तकसीम हो तो उसको मुबादला समझा जाता है। तवज्जो है, तो यहां पर भी ये जो जमीन है ये जैद ने अपना मुशा हिस्सा वक्फ कर दिया और अमर ने कहा कि अब मेरे साथ तकसीम कर दो, मुशा अपना वक्फ हिस्सा मेरे से अलग कर दो, तो जब दोनों अलग करेंगे तो यह तकसीम किसके अंदर कर रहे हैं, जमीन में, और जमीन किस में से, ज़वातुल क़ियम, और ज़वातुल क़ियम के अंदर तकसीम हो तो वहां पर मुबादला गालिब होता है। यूं समझो क्या किया जा रहा है, मुबादला किया जा रहा है, और जब मुबादला किया जा रहा है तो गोया बै हो रही है। बै भी किसे कहते हैं, मुबादलतुल माली बिल माली, आप एक माल देते हैं और बाय से दूसरा माल ले लेते हैं, तो बै के अंदर भी मुबादलतुल माल बिल माल होता है। और यहां भी जमीन के अंदर कुछ हिस्सा तो था ही जैद का और कुछ हिस्सा अमर का बनता था वो जैद ने ले लिया, और बदले में अमर की जमीन में जो जैद का हिस्सा बनता था वो उसको दे दिया, तो मुबादला पाया गया और मुबादलतुल माल बिल माल है, और इसको क्या कहते हैं, बै कहते हैं। यानी यूं समझो जैद ने अपने कुछ हिस्से का मालिक अमर को बना दिया और अमर ने अपने कुछ हिस्से का मालिक जैद को बना दिया, तो तमलीक पाई गई। क्या पाई गई, तमलीक पाई गई। हालांकि जब वक्फ लाजिम हो जाए, वक्फ लाजिम हो जाए तो आप पढ़ चुके हैं उसमें किसी किस्म का तसारुफ जायज नहीं, ना उसे बेचा जा सकता है ना हिबा किया जा सकता है, यानी किसी दूसरे को उसका मालिक नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पर जब वक्फ की तकसीम की जाएगी तो यहां तो ये तमलीक पाई जा रही है, तो ये तो जायज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ की तमलीक जायज नहीं है, किसी दूसरे को मालिक नहीं बनाया जा सकता। तो साहिब हिदायत ने आपको बतलाया था कि यहां पर जमीन के अंदर तकसीम हो रही है और इसको मुबादला करार दिया जाता है, लेकिन यहां पर इसको इफराज करार देंगे, यहां पर इसको इफराज करार दे देंगे। वैसे तो जमीन के अंदर तकसीम हो तो वो मुबादला होता है, लेकिन यहां इसको इफराज करार देंगे वक्फ की तरफ नजर करते हुए। जब इफराज पाया गया तो मुबादला है ही नहीं, जब मुबादला है ही नहीं तो तमलीक नहीं, जब तमलीक नहीं तो लिहाजा कोई खराबी लाजिम नहीं आई भाई, क्योंकि वक्त में तो तमलीक जायज नहीं थी, लेकिन यहां तो तमलीक है ही नहीं। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया था कि जब वाकिफ जो है अपने शरीक के साथ उस जमीन को तकसीम करता है तो याद रखो इसको मुकासमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपना हिस्सा लेना एक चीज में से, अपना हिस्सा अलग करना, इसको क्या कहते हैं? मुकासमा। और मुकासमा हमेशा दो अफराद के दरमियान होता है, एक होता है मुकासिम अपना हिस्सा लेने वाला और दूसरा होता है मुकासम जिससे अपना हिस्सा लिया गया है। तो जब भी मुकासमा होगा यानी अपना हिस्सा अलग किया जाएगा, वहां मुकासिम और मुकासम का अलग अलग होना जरूरी है। एक ही आदमी मुकासिम और मुकासम नहीं हो सकता। जैद है मुकासिम अपना हिस्सा लेने वाला और आप कहें भाई किससे आपने अपना हिस्सा लिया, तो जैद कहते हैं जी मैंने अपने आप से ही अपना हिस्सा लिया। तो देखो कोई भी इस तरह नहीं कहता कि अपने आप से ही हिस्सा लिया है। तवज्जो है, मालूम मुकासिम और होना चाहिए, मुकासम और, या यूं कहो मुतालिब जो है मुतालबा करने वाला वो और होता है और जिससे मुतालबा किया जाए वो और होता है। तो जैद ने वक्फ की है, उसका शरीक जो है वो मुतालबा कर रहा है कि मेरा हिसाब अलग कर दो, तो वो क्या बन गया? मुतालिब। और मुतालबा किससे है? जैद से। तो जैद क्या बन गया? मुतालब। तो मुतालिब और होता है, मुतालब और होता है, एक ही शख्स मुतालिब और मुतालब नहीं हो सकता। मसलन जैद कहता है मैंने मुतालबा किया, मालूम जैद मुतालिब है, पूछा गया किससे मुतालबा किया, कहता है मैंने अपने आप से ही मुतालबा किया। नहीं भाई, ये तो आप मुतालिब भी बन गए और मुतालब भी बन गए, एक ही शख्स मुतालिब और मुतालब नहीं हो सकता। मुतालबा हमेशा किसी दूसरे से किया जाता है। लिहाजा जब भी वक्फ के अंदर तकसीम की जाएगी तो वहां मुकासमा होगा, तो वह दो अफराद में होना जरूरी है। लेकिन अगर एक शख्स ने अपनी ही जमीन के कुछ हिस्से को वक्फ कर दिया, मसलन जैद का एक बाग है, जैद ने कहा मैंने इसमें से निसफ बाग वक्फ कर दिया, निसफ बाग वक्फ कर दिया, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक अगरचे यह मुशा हिस्से का वक्फ इसने किया है तो यह भी जायज है। बाकायदा हदबंदी नहीं की कि यह वाला हिस्सा मैंने वक्फ किया है या ये वाला, बस मुतलकन कहा इस बाग का निसफ मैंने क्या कर दिया? वक्फ कर दिया। मालूम हुआ मुशा हिस्से का वक्फ किया है, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक यह वक्फ जायज है। अब अगर इसको तकसीम करने की जरूरत पेश आ जाए तो अब क्या करें? अब तो कोई दूसरा शरीक नहीं है जमीन के अंदर, यही आदमी है जिसका कुछ हिस्सा अभी भी इसका अपना ही है और कुछ हिस्सा इसने वक्फ कर दिया है। तो फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि इस सूरत में फिर काजी इसके साथ मुकासमा करेगा, क्योंकि मुकासिम और मुकासम अलग होने चाहिए। या यूं करे, ये आदमी जो है निसफे बाग किसी दूसरे आदमी को बेच दे, निसफ तो वक्फ कर दिया है और बाकी निसफ किसी दूसरे को बेच दे, तो अब वक्फ भी मुशा है और दूसरे को जो निसब बेचा है वो भी मुशा है। फिर वो दूसरा आदमी इसे तकाजा करे कि भाई मेरा हिस्सा अलग कर दो, तो वो आदमी मुकासिम हो जाएगा कि वो अपना हिस्सा अलग करना चाहता है और ये क्या बन जाएगा? मुकासम बन जाएगा। फिर दोनों तकसीम कर लेंगे। जब तकसीम हो गया अब आधा बाग मुतय्यन हो गया, ये वाला आधा बाग जो है ये वक्फ है और दूसरा बाग उस दूसरे आदमी का है, उसको फिर वो वाकिफ वापस उससे खरीद लेगा। तो इस तरह वो मुकासमा कर लेंगे। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। قال والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط। भाई यहां से साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि वक्फ की आमदनी में से सबसे पहले जो है उस वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवाई जाएगी। वजह यह कि वो जो वक्फ करने वाला था वो चाहता था कि इस वक्फ की आमदनी हमेशा सदका होती रहे और उसको इसका अजर सवाब मिलता रहे, लिहाजा इस वक्फ के हमेशा रहने के लिए जरूरी है कि इसकी तामीर और मुरम्मत करवाई जाए। और वो तामीर और मुरम्मत जो है वो उन्हीं लोगों पर आएगी जिनके लिए इसकी आमदनी वक्फ की गई है, यानी इस वक्फ से फायदा फुकरा उठा रहे हैं तो इस वक्त की तामीर और मुरम्मत का खर्चा भी उन्हीं फुकारा पर आएगा। क्योंकि हदीस में आता है अल खराज बिज जमानी, नफा जो होता है वो जमान के बदले होता है। किसी चीज से एक आदमी जब नफा उठाता है तो उस चीज का जमान भी उसी शख्स पर आता है। यह हदीस पहले भी गुजर चुकी है भाई, अलबत्ता जरा दूसरे अल्फाज के साथ कि अल गुर्म बिल गुनमी भाई। तो हदीस में आता है अल खराज बिल जमानी, खराज जमान के बदले है। लिहाजा ये जो वक्त की आमदनी है इसमें से सबसे पहले इस वक्त की तामीर और मुरम्मत करवाई जाएगी। और फिर साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि यहां दो सूरतें हैं, कि वाकिफ ने या तो इस वक्त की आमदनी आम फुकरा पर सदका की होगी और आम फुकरा का तो पता नहीं चल सकता, लिहाजा फिर इस सूरत में इसी वक्फ की आमदनी जो आ रही है उसी से तामीर और मुरम्मत करवाएंगे। वजह यह कि यह जो वक्फ की आमदनी है यह फुकरा का हक है और इस वक्फ की तामीर और मुरम्मत की जिम्मेदारी भी फुकरा पर आती है, लिहाजा ये आमदनी उन्हीं का हक है, उन्हीं फुकरा का माल है, तो इन्हीं के माल में से फिर इस वक्फ की मुरम्मत करवाई जाएगी भाई। लेकिन अगर वाकिफ ने यह वक्फ किया है किसी मुअय्यन आदमी पर, तो फिर इस सूरत के अंदर उस मुअय्यन आदमी से तो मुतालबा किया जा सकता है कि इस वक्त की मुरम्मत करवा लो, लिहाजा फिर उससे मुतालबा किया जाएगा और फिर उसकी मर्जी है जिस मर्जी आमदनी से इस वक्त की तामीर करवाए, इस वक्त की मुरम्मत करवाए, चाहे इसी आमदनी में से वो मुरम्मत करवा दे और चाहे तो अपने किसी दूसरे माल से इस वक्त की मुरम्मत करवा दे। तवज्जो है, तो फुकारा पर जब वक्फ किया है तो फुकारा तो मुतायन नहीं, लिहाजा उस सूरत में इसी आमदनी से ही वक्फ की मुरम्मत करवाई जाएगी क्योंकि आमदनी फुकारा का हक है, फुकारा का माल है, तो फुकारा के माल से ही इसकी इस्लाह और मुरम्मत करवा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मुअय्यन आदमी है उससे तो मुतालबा हो सकता है कि इस वक्फ की मुरम्मत करवा दो क्योंकि वो इससे फायदा उठा रहा है, तो मुरम्मत करवाने की जिम्मेदारी भी उसकी है, लिहाजा उससे कहा जाएगा और फिर वो चाहे इसी वक्फ की आमदनी को इस पर खर्च कर दे क्योंकि यह भी उसी का माल है और चाहे अपना कोई दूसरा माल जो है इस वक्फ की तामीर और मुरम्मत पर खर्च कर दे। और फिर साहिब हिदाया यह भी बतलाएंगे कि वक्फ की तामीर और मुरम्मत जो है उसी सूरत पर करवाई जाएगी जिस सूरत पर वाकिफ ने इसको वक्फ किया था, इसको मजीद आला बनाने के लिए जायद खर्चा नहीं किया जाएगा इल्ला ये कि वो मुअय्यन शख्स इसकी इजाजत दे दे, वो मुअय्यन शख्स जिस पर वक्फ किया है वो इसकी इजाजत दे दे। और अगर फुकारा पर वक्फ किया है तो वहां तो इजाजत की भी सूरत नहीं है, तो फिर उसमें बास फुकहा फरमाते हैं कि वक्फ को पहले से बेहतर हालत पर करना यह जायज है और बास कहते हैं नहीं, इसकी जायद तामीर और मुरम्मत की इजाजत नहीं होगी। और साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि ज्यादा सही कौल यही है कि इस वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवाई जाएगी कि यह उसी हालत पर रहे जिस हालत पर वक्फ किया था, इससे जायद इस पर खर्च करने और इसको आला बनाने की हाजत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वल वाजिबु अन यबतदी मिन इर्तिफाइल वक्फ बिइमारती ही, यहां एक लफ्ज आ रहा है इर्तिफा भाई, इर्तिफा याद रखो महासिल और आमदनी जो है उसको इर्तिफा कहते हैं, और बिइमारती ही याद रखो अमारा यामुरु इमारतन का माना होता है अरबी जुबान में तामीर करना और किसी इमारत को बनाना, अमारा या मोरो इमारतन। अलबत्ता यहां यह इमारत का लफ्ज तामीर और मुरम्मत के माना में इस्तेमाल होगा। तवज्जो है, तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वल वाजिब अय्यब तदी अमीन इर्तिफाइल वक्फी, और वाजिब यह है कि वक्फ की आमदनी से इब्तिदा की जाए बे इमारती ही उस वक्फ की मुरम्मत की, शरत दालिकल वाकिफ औ लम यश्तरित, चाहे वक्फ करने वाले ने इस तामीर और मुरम्मत की शर्त लगाई थी या शर्त नहीं लगाई थी, चाहे उसने शर्त लगाई थी या शर्त नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी इसकी आमदनी से वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवाई जाएगी। तो कहते हैं शरत दालिकल वाकिफ औ लम यश्तरित, वाकिफ ने इसकी शर्त लगाई थी या शर्त नहीं लगाई थी, लिअन्न कस्दल वाकिफ सर्फुल गल्लति मुअब्बदा, कहते हैं इसलिए क्योंकि वाकिफ का जो इरादा है सर्फुल गल्लति मुअब्बदा, वो इस वक्फ की आमदनी को खर्च करना है मुअब्बदन हमेशा, वो चाहता है कि इस वक्फ की आमदनी को हमेशा खर्च किया जाए भाई। तो कहते हैं लिअन्न कस्दल वाकिफ सर्फुल गल्लति मुअब्बदा, इसलिए क्योंकि वक्फ करने वाले का जो इरादा है वो इस आमदनी को खर्च करना है हमेशा के तरीके पर, वला यबका दाइमतन इल्ला बिल इमारती, और ये दायमी तौर पर वक्फ बाकी नहीं रह सकता मगर तामीर और मुरम्मत के जरिए ही, फयसबुतु शर्तुल इमारत इक्तिजाअन, तो तामीर की शर्त जो है वो इक्तिजा के तरीके पर साबित हो जाएगी, यानी वक्फ खुद ही इसका तकाजा कर है कि इसकी तामीर और मुरम्मत करवाई जाए ताकि यह बाकी रह सके और इसकी आमदनी सदका होती रहे और वाकिफ को सवाब मिलता रहे। तो तो यहां तामीर और मुरम्मत की जो शर्त है वह इक्तिजाअन साबित होगी। क्या माना इक्तिजाअन? यानी वक्फ खुद ही तकाजा करता है कि इसकी तामीर और मुरम्मत करवाई जाए ताकि यह मुअब्बद रहे। भाई तो कहते हैं फयसबुतु शर्तुल इमारत इक्तिजाअन, तो लिहाजा तामीर और मुरम्मत की जो शर्त है वो इक्तिजा के तरीके पर साबित होगी। वली अन्नल खराजा बिज़मानी, और नीज इसलिए क्योंकि नफा जो होता है वो जमान के बदले होता है। जो लोग इस वक्त की आमदनी से नफा उठा रहे हैं तो जमान भी उन्हीं पर आएगा, तामीर और मुरम्मत का खर्चा भी उन्हीं पर आएगा भाई। और नीज ये जो वक्फ की आमदनी है ये उन्हीं का हक है, ये उन्हीं लोगों का हक है जिन पर ये खर्च की जा रही है, तो ये आमदनी उन लोगों का माल है, तो ये तामीर और मुरम्मत का खर्चा उन पर है, लिहाजा इसी आमदनी में से इस पर खर्च किया जा सकता है। तो कहते हैं वली अन अल खराज अभी जमानी, और इसलिए क्योंकि नफा जो है वो जमान के बदले होता है। वह सारा का नफकतिल अब्दिल मूसा बिखिदमती ही, भाई एक शख्स है वो अपने गुलाम की वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद मेरा ये गुलाम अमर की खिदमत करता रहेगा। तो अब देखो उसने अमर को गुलाम का मालिक नहीं बनाया, सिर्फ गुलाम की खिदमत की वसीयत की है अमर के लिए। गुलाम तो इसके वारिसों ही का होगा, अलबत्ता गुलाम की खिदमत उस अमर के लिए होगी। और फिर याद रखो ये जो वसीयत करने वाला है इसको कहते हैं मूसी भाई, औसा यूसी ईसा अन फहुआ मोहसिन, तो ये जो वसीयत करने वाला है यह है मूसी, और जिस चीज की वसीयत की है वो है मूसा, यानी ये गुलाम की जो खिदमत है वो है मूसा भाई, और जिसके लिए वसीयत की है उसको कहते हैं मूसा लहू, मूसा लहू जिसके लिए वसीयत की गई है भाई। तो याद रखो फुकहा फरमाते हैं कि जब एक शख्स किसी शख्स के लिए अपने गुलाम की खिदमत की वसीयत कर दे तो अब इस गुलाम की खिदमत से वह मूसा लहू फायदा उठा रहा है, लिहाजा इस गुलाम के खाने पीने का खर्चा भी इसी मूसा लहू पर होगा, खाने पीने और कपड़ों का खर्चा भी इसी मूसा लहू पर होगा, क्योंकि अल खराज बिज़मानी, नफा जो है वो जमान के बदले है। मूसा लहू इस गुलाम से नफा उठा रहा है इसकी खिदमत के जरिए, तो उस गुलाम का खर्चा वगैरह इसी मूसा लहू पर होगा। तो यहां पर भी एक शख्स ने कोई इमारत किसी के लिए वक्फ की है तो इस इमारत की आमदनी से जो लोग नफा उठा रहे हैं तो इमारत की तामीर और मुरम्मत भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, उन्हीं को कहा जाएगा इस पर खर्च करें, और ये जो आमदनी है ये उन्हीं का हक है, उनको मिल रहा है, तो इस आमदनी को भी इस तामीर और मुरम्मत पर खर्च किया जा सकता है। तो कहते हैं वली अन अल खराज बिज़मानी, और इसलिए क्योंकि नफा जो है वह जमान के बदले होता है। वसारा का नफकतिल अब्दिल मूसा बिखिदमती ही, वसारा और ये वक्फ की तामीर हो गई, का नफकतिल अब्दिल मूसा उस गुलाम के नफके की तरह, अल मूसा बिखिदमती ही जिसकी खिदमत की वसीयत की गई है। ये जो वक्फ की तामीर है ये उस गुलाम के नफके की तरह हो गई जिसकी खिदमत की वसीयत की गई है, और जिसके लिए वसीयत की है वो नफा उठा रहा है तो गुलाम का नफका भी इसी पर, और जिसके लिए वक्फ किया है वो नफा उठा रहे हैं तो वक्फ की तामीर और मुरम्मत भी उन्हीं के जिम्मे है। तो कहते हैं वसारा का नफकतिल अब्दिल मूसा बिखिदमती ही, तो ये वक्फ की तामीर और मुरम्मत जो है उस गुलाम के नफके की तरह हो गई जिसकी खिदमत की वसीयत की गई है। फइन्नहा अलल मूसा लहू, इसलिए क्योंकि ये जो गुलाम का नफका है ये मूसा लहू पर होगा, बिहा अय बिल खिदमती, उस खिदमत की वजह से इस गुलाम का नफका मूसा लहू पर होगा खिदमत की वजह से। तो कहते हैं फइन्नहा अलल मूसा लहू बिहा, तो ये जो नफका है ये मूसा लहू पर होगा उस खिदमत की वजह से। आगे देखिए सुम इनकान अल वक्फ अलल फुकराई, तो मैंने बतलाया भाई कि वक्फ या तो आम फुकरा पर होगा या किसी मुअय्यन आदमी पर होगा। फुकरा पर अगर वक्फ किया है तो फुकरा तो मुतय्यन नहीं है, लिहाजा ये जो वक्फ की आमदनी है इसी के जरिए तामीर और मुरम्मत करवा देंगे, क्योंकि ये फुकरा ही का माल है, तो गोया उन्हीं के माल से तामीर और मुरम्मत करवाई जा रही है। और अगर वो शख्स मुअय्यन है जिस पर वक्फ किया है तो फिर इस सूरत में ये जो इस इमारत की आमदनी है इसी को तामीर और मुरम्मत पर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उस शख्स से मुतालबा किया जाएगा कि इस इमारत की तामीर और मुरम्मत करवाओ, फिर उसकी मर्जी है चाहे इसी आमदनी में से तामीर और मुरम्मत करवाए और चाहे अपने किसी दूसरे माल से तामीर और मुरम्मत करवाए। तो कहते हैं सुम इन कानल वक्फ अलल फुकराई, फिर अगर ये वक्फ जो है वो फुकारा पर था, वला यू जफर उलहुम, और उनको पाया नहीं जा सकता। जफीरा या जफारू के माने हैं किसी चीज को पा लेना, हासिल कर लेना, और अगर इस वक्फ को फुकारा पर किया गया है, वला यू जफर उलहुम, और उन फुकारा को पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो गैर मुतायन है या बहुत ज्यादा है भाई, तो उनको पाया नहीं जा सकता कि उनसे मुतालबा किया जाए। तो कहते हैं वह अकरबू अमवालिहिम हादिहिल गल्लतु, और उनके मालों में सबसे करीबी माल ये वाली आमदनी है। गल्ला का क्या माना? आमदनी। वह अकरबू अमवालिहिम हादिहिल गल्लतु, और उनके मालों में सबसे करीब जो है ये वाली आमदनी है। ये वक्फ की जो आमदनी है ये फुकरा पर खर्च की जा रही है, तो ये फुकरा का माल है, तो फुकरा के और माल का तो पता नहीं, लेकिन ये आमदनी उनका सबसे करीबी माल है जो हमारे काबू में है और इख्तियार में है, और जिसे इस वक्त पर खर्च किया जा सकता है, लिहाजा इसी में से वक्त पर खर्च किया जाएगा। तो कहते हैं वह अकरबू अमवालिहिम हादिहिल गल्लतु, और उनके मालों में सबसे करीबी माल ये आमदनी है, यानी जिसे खर्च किया जा सकता है। फतजिबू फीहा, तो इसी के अंदर वो तामीर और मुरम्मत वाजिब होगी। वलौ कान अलवक्फु अला रजुलिन बिआइनिही, और अगर वक्फ जो है किसी मुअय्यन आदमी पर था, वह आखिरहु लिलफुकराई, और उसका आखिर फुकरा के लिए था, ताकि वक्फ मुअब्बद हो जाए। आपने पढ़ा है वक्फ का आखिर मुअब्बद होना चाहिए, अगर एक मुअय्यन आदमी के लिए वक्फ की आमदनी की शर्त लगाई है, तो ये मौकूफ अलैह जो है ये तो कुछ अरसे के बाद मर जाएगा, तो ये तो वक्फ मुअब्बद ना रहा, लिहाजा मुअब्बद होने के लिए जरूरी है कि साथ ये भी जिक्र किया जाए कि इसके बाद फिर फुकरा के लिए होगा, या आगे और मसारिफ जिक्र किए जाएं जो हमेशा वाले हों भाई। तो इसीलिए साहिब हिदाया ने भी कहा वलौ कान अलवक्फ अला रजुलिन बिआइनिही व आखिरहु लिलफुकराई, और अगर वक्फ किसी मुअय्यन आदमी पर था और वक्फ आखिर जो है फुकरा के लिए था, फहुवा फी मालिही, तो ये तामीर और मुरम्मत जो है उसी मुअय्यन आदमी के माल में से होगी। आई माल इंशा अफी हाल हयातिही, जिस माल से भी वो चाहे अपनी जिंदगी में, यानी वो चाहे इसी आमदनी को खर्च करे, चाहे अपने किसी दूसरे माल को तामीर और मुरम्मत पर खर्च करे, ये उसकी मर्जी है भाई। तो कहते हैं फहुआ फी मालिही, तो ये तामीर और मुरम्मत जो है उसी मौकूफ अलैह के माल में होगी। आई माल इंशा अफी हाल हयातिही, जो माल भी वो चाहे अपनी जिंदगी में। वला युखज़ु मिनल गल्लती, और ये तामीर और मुरम्मत जो है ये उस आमदनी में से नहीं लिया जाएगा, ये उस आमदनी से नहीं करवाई जाएगी, यानी कतई और यकीनी तौर पर, बल्कि ये उस आदमी की मर्जी है, चाहे इसी आमदनी को खर्च करे, चाहे कोई और माल दे दे, तो इसी आमदनी में से लेना ये कतई तौर पर नहीं होगा। तवज्जो है, तो ये माना है वला युखदु मिनल गल्लती, और ये तामीर और मुरम्मत जो है इसी आमदनी में से नहीं ली जाएगी, यानी इससे नहीं करवाई जाएगी, यानी कतई तौर पर। लिअन्नहु मुअय्यनुन, इसलिए क्योंकि वो मौकूफ अलैह तो मुतअय्यन है, युमकिनु मुतालबतुहु, उससे मुतालबा मुमकिन है। व इन्नमा युस्तहक्कुल इमारतु अलैही, यहां से ये बतला रहे हैं कि उस पर कितनी तामीर और मुरम्मत लाजमी है, बतलाएंगे कि वक्फ उसी सूरत पर हो जाए जिस सूरत पर वाकिफ ने वक्फ किया था, जायद खर्चे की जरूरत नहीं, वो इस मौकूफ अलैह पर लाजिम नहीं है भाई। तो कहते हैं वह इन्नमा युस्तहक्कुल इमारतु अलैही, याद रखो भाई, इस्तहक्का यस्तहिक्कु का एक माना आता है किसी चीज को वाजिब कर लेना, किसी चीज को लाजिम कर लेना, और यहां यही माना है भाई। कहते हैं वह इन नमा युस्तहक्कुल इमारतु अलैही, और मौकूफ अलैह पर इस ये तामीर और मुरम्मत जो है वाजिब है। बिकद्री मा युबकिल मौकूफा, इतनी मिकदार की जो इस मौकूफ को बाकी रखे। अलस सिफतिल्लती वकफहू, उसी सिफत पर जिस सिफत पर वाकिफ ने इसको वक्फ किया था, इतना खर्चा उस पर लाजिम है, जायद खर्चा इस पर लाजिम नहीं। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह इन नमा युस्तहक्कुल इमारतु अलैही, और मौकूफ अलैह पर इसकी तामीर और मुरम्मत जो है वाजिब है। बिकद्री मा युबकिल मौकूफा, इतनी मिकदार के जो उस मौकूफ चीज को बाकी रखे। अलस सिफतिल लती वकफहू, उसी सिफत पर जिस सिफत पर वाकिफ ने इसे वक्फ किया था। वह इन खरीबा, और अगर ये वक्फ जो है ये बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए। खरीबा यखराबू का माना वीरान होने के भी आते हैं, और इसके माने बर्बाद होने के भी हैं। माना यह है अगर वक्त की इमारत गिर जाए, अगर वक्त की इमारत गिर जाए तो फिर भी इसको उसी सिफत पर तामीर करवाया जाएगा, उससे जायद खर्चा लाजमी नहीं। हां अगर वो मौकूफ अलैह खुद जायद खर्चा करना चाहता है तो फिर यह उसकी मर्जी है, फिर जायद खर्चा कर सकता है, लेकिन यह उस पर लाजिम नहीं है भाई। तो कहते हैं वह इन खरीबा, और अगर वह वक्फ जो है खराब हो जाए यानी गिर जाए उसकी इमारत, तो यू बना अला दालिकल वस्फी, तो इसको तामीर किया जाएगा उसी वसफ पर, यानी जायद वसफ पर तामीर करना जरूरी नहीं है। तो कहते हैं वह इन खरीबा यू बना अला दालिकल वस्फी, और अगर वह वक्फ जो है गिर जाए उसकी इमारत तो उसको उसी वसफ पर तामीर किया जाएगा। ली अन्नहा बिसिफतिहा, इसलिए क्योंकि तामीर और मुरम्मत जो है इसी सिफत पर होने की वजह से, सारत गल्लतुहा मसरूफतन, इस वक्त की जो आमदनी है वो खर्च की जाएगी, इलल मौकूफी अलैही, मौकूफ अलै पर, जब ये उसी वसफ पर होगा तो इसकी आमदनी उसी मौकूफ वाले पर खर्च करना मुमकिन होगा। यह माना है ले अन्नहा बिसिफतिहा, इसलिए क्योंकि तामीर और मुरम्मत के उसी सिफत पर होने की वजह से, सारत गल्लतुहा मसरूफतन इलल मौकूफ अलैही, इस वक्त की आमदनी जो है उस मौकूफ वाले पर खर्च की जा सकती है। फअम्मा ज़ियादतु अला ज़ालिका, बाकी इस पर ज्यादती करना, फलैसत बिमुस्तहक़तिन अलैही, यह उस पर वाजिब और लाजिम नहीं है। इससे जायद की तामीर और मुरम्मत उस पर वाजिब और लाजिम नहीं है। वल गल्लतु मुस्तहक़तुन लहू, और आमदनी जो है वो तो उसी के लिए वाजिब है, आमदनी का हकदार तो वही है, लिहाजा उसकी इजाजत के बगैर जायद पर खर्च नहीं किया जा सकता। तवज्जो है, जायद तामीर करना, आला तामीर करना, यह उस पर लाजिम नहीं, लेकिन आमदनी उसी के लिए लाजिम है। तो आमदनी को जायद पर आप खर्च कर ही नहीं सकते इल्ला ये कि वो खुद इजाजत दे दे, क्योंकि आमदनी उसका हक है और जायद तामीर तो उस पर लाजिम नहीं, लिहाजा इसमें उसकी मर्जी जरूरी है। अगर आप जायद तामीर करना चाहते हैं, वक्फ और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं भाई, तो आमदनी उसी का हक है। फला यजूज सर्फुहा इला शय इन आखरा, लिहाजा जायज नहीं है कि इस आमदनी को खर्च किया जाए किसी और चीज पर, इल्ला बि रिज़ाहु, मगर उस मौकूफ वाले की मर्जी से। वलौ कान अल वक्फ अलल फुकराई, अब दूसरी सूरत बयान कर रहे हैं, वक्फ किया है और वक्फ किया है आम फुकरा पर, तो इसकी आमदनी के जरिए तामीर और मुरम्मत करवाएंगे तो क्या जरा ज्यादा अच्छे तरीके से तामीर और मुरम्मत करवा सकते हैं? तो बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि जब हां फुकरा के लिए वक्फ किया है तो जरा अच्छे तरीके से भी तामीर और मुरम्मत जायज है, लेकिन दीगर फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, यहां पर भी जरूरत की वजह से ही तामीर और मुरम्मत की जाएगी, और जरूरत यह है कि उसी हालत पर उसको कर दिया जाए जिस हालत पर वाकिफ ने वक्फ किया था। तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि ज्यादा सही कौल यही है कि आम फुकरा के लिए भी वक्फ किया जाए तो उस वसफ से ज्यादा तामीर और मुरम्मत करना जिस वसफ पर वाकिफ ने वक्फ किया था, उससे ज्यादा तामीर और मुरम्मत जायज नहीं है। यह ज्यादा सही कौल है, साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे। तो कहते हैं वलव कान अल वक्फ अलल फुकराई, और अगर वो वक्फ फुकरा पर था, फकदालिका इंदल बाजी, तो भी इसी तरह है बाज़ फुकहा के नजदीक, यानी उस तामीर और मुरम्मत में ज्यादती जायज नहीं है। व इंदल आखरीन यजूज़ु ज़ालिका, और दीगर फुकहा के नजदीक ये जायज है कि और अच्छे तरीके से तामीर और मुरम्मत करवा ली जाए। वल अव्वलु असहु, और पहला कौल ज्यादा सही है कि तामीर और मुरम्मत में ज्यादती जायज नहीं है। वल अव्वलु असहु, तो पहला कौल ज्यादा सही है। लिअन्न सर्फ इलल इमारती, इसलिए क्योंकि जो तामीर और मुरम्मत पर खर्च किया जाता है, जरूरत इबका इल वक्फी, ये वक्फ को बाकी रखने की जरूरत की वजह से है कि वक्फ बाकी रहे, इसको बाकी रखा जाए और ज्यादती की कोई जरूरत नहीं। तो जो तामीर और मुरम्मत की जाती है उसकी इजाजत जरूरत की वजह से है, वरना तो वो फुकरा का हक है, तो जरूरत की वजह से उस तामीर और मरम्मत की इजाजत है और जायद करने की तो कोई जरूरत नहीं, जब जरूरत नहीं तो वो जायज भी नहीं होगा। तो कहते हैं लि अन्न सर्फ इलल इमारती, इसलिए क्योंकि तामीर और मुरम्मत पर जो खर्च करना है, जरूरत इबका इल वक्फी, वो वक्फ को बाकी रखने की जरूरत की वजह से है। वला जरूरत फी ज्यादती, और ज्यादती के अंदर कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा वो जायज नहीं होगी। आगे देखिए, काला फ इन व कफा दारन अला सुकना वलदी ही फल इमारत अला मन लहू सुकना। अब दूसरी सूरत आ गई। पहली सूरत में तो वक्फ की आमदनी फुकरा वगैरह पर खर्च की जा रही थी, वक्फ से बाकायदा आमदनी हासिल हो रही थी। अब दूसरी सूरत है, एक शख्स ने एक इमारत वक्फ कर दी किसी की रिहाइश के लिए कि मैं यह इमारत वक्फ करता हूं, जब तक अमर जिंदा है वो इसके अंदर रिहाइश रखे, और जब अमर का इंतकाल हो जाए तो फिर उसके बाद इसके अंदर दीन पढ़ने वाले जो तुलबा हैं वो रिहाइश रखा करें। तवज्जो है। तो आप इस सूरत में यहां पर वक्फ की आमदनी है ही नहीं, सिर्फ उसके मुनाफे हैं, उसकी रिहाइश से फायदा उठाया जा रहा है। तो क्या आप भी जिसके लिए वक्फ किया है उसी पर खर्चा आएगा? कहते हैं हां, इस सूरत में भी खर्चा उसी पर आएगा, क्योंकि अलखराज बि जमानी, अमर इसे रिहाइश का नफा उठा रहा है तो तामीर और मुरम्मत का खर्चा भी उसी पर होगा। भाई तो कहते हैं, काल साहिब खुदूरी फरमाते हैं, फइन वकफा दारन, अगर किसी शख्स ने कोई घर वक्फ कर दिया, अला सुकना वलदी ही, अपनी औलाद की रिहाइश की शर्त पर, अपनी औलाद की रिहाइश की शर्त पर, अपनी औलाद को वैसे ही जिक्र कर दिया, चाहे अपनी औलाद की रिहाइश की शर्त लगाए, चाहे और दीनी तलबा की रिहाइश की शर्त लगाए, या किसी अजनबी की रिहाइश की शर्त लगाए, सबका हुक्म एक ही है भाई। तो कहते हैं, काल साहिब खुदूरी फरमाते हैं, फइन वकफा दारन अला सुकना वलदी ही, अगर किसी ने कोई घर अपनी औलाद की रिहाइश की शर्त पर वक्फ कर दिया, फल इमारतु अला मन लहू सुकना, तो तामीर और मुरम्मत जो है उसी शख्स पर होगी जिसके लिए रिहाइश है, लिअन्न अलखराज बिज़्ज़मानी, इसलिए क्योंकि नफा जो है वह जमान के बदले होता है, अला मा मर, उस वजह से जो बात गुजर गई कि जो शख्स जिस चीज का नफा उठाता है जमान और खर्चा भी उसी पर आता है, फसारा का नफकत अब्दिल मूसा भी खिदमती ही, तो यह तामीर और मुरम्मत जो है उस गुलाम के नफके की तरह हो गई जिसकी खिदमत की वसीयत की गई है, जिसके लिए खिदमत की वसीयत की है उस पर उस गुलाम का नफका आता है। इसी तरह यहां पर जिसकी रिहाइश के लिए वक्फ किया है उसी पर तामीर और मुरम्मत का खर्चा भी आएगा। भाई आगे देखिए, फइनिम तनाम इंदाली का औकान फकीरा, भाई सूरत यह, जैद ने अपनी एक इमारत वक्फ कर दी कि इसके अंदर अमर रहा करेगा, और अमर के इंतकाल के बाद फिर इसमें दीन पढ़ने वाले तुलबा इसमें रिहाइश रखेंगे। तो अब उस इमारत की तामीर और मुरम्मत की जरूरत पेश आ गई, अमर से कहा गया कि तामीर और मुरम्मत करवाओ, अमर ने इनकार कर दिया, या वो गरीब है, फकीर है, उसके पास माल है ही नहीं कि वो इस तामीर और मुरम्मत पर खर्च करवाए। तो अब क्या किया जाए, इस इमारत की आमदनी तो कोई है नहीं और तामीर और मुरम्मत की हाजत है। तो कहते हैं इस सूरत में हाकिम जो है, काजी जो है, उस मौकूफ अले से यह मकान ले लेगा और इस मकान को किराए पर दे देगा और फिर इसके किराए को जमा कर लेगा और फिर उसके जरिए इस मकान की तामीर और मुरम्मत करवा देगा, और फिर जब तामीर और मुरम्मत हो जाए तो अब फिर वह मकान उसी मौकूफ अले को यानी अमर को दे देगा। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं, फइनिमता नाम इन जालिका, अगर मौकूफ अले इसे रुक गया यानी वो इस पर खर्च नहीं कर रहा, इसकी तामीर और मुरम्मत नहीं करवा रहा, औ कान फकीरन, या वो मौकूफ अले जो है वो फकीर है, तो आ जा रहा हाकिमो, तो हाकिम और काजी जो है वो इस मकान को उजरत पर दे देगा यानी किराए पर दे देगा, वह आमारहा भी उजरतीहा, भाई मेरी किताब में है अम्मारा, मीम पर शद है, याद रखो ये दुरुस्त नहीं है। वजह यह कि एक है उर्दू में तामीर और एक है अरबी में तामीर, दोनों का माना अलग अलग है। उर्दू में तामीर का माना होता है किसी इमारत वगैरह को बनाना, और अरबी में अम्मरा युअम्मिरु तामीर का माना होता है किसी जगह को आबाद करना, किसी जगह में इंसानों को लाकर बसाना, इसको क्या कहते हैं, तामीर कहते हैं। तो लिहाजा यहां पर इसको मुजर्रद से पढ़ें भाई, अमरा यामुरु इमारतन, मैंने आपको बतलाया अमरा यामुरु इमारतन का क्या माना है, कोई इमारत बनाना, तामीर करना, और मुराद क्या है यहां, मुरम्मत मुराद है, तवज्जो है। तो लिहाजा यहां जो अमरा आया है यह दुरुस्त नहीं है, यह बाबे तफ़ईल से नहीं होना चाहिए बल्कि यह मुजर्रद से होना चाहिए, बाबे नसरा से है भैया। तो कहते हैं कि अगर वो खर्च नहीं करता तो आ जा रहा हल हाकिमो, तो हाकिम जो है उस मकान को किराए पर दे दे, वह आमारा हा भी उजरती हा, और उसकी तामीर करवा दे उसकी उजरत के जरिए, वह ईदा आमारा हा, और जब हाकिम इसकी तामीर और मुरम्मत करवा दे तो रद्दहा इला मन लहु सुकना, तो फिर यह मकान वापस कर दे उस शख्स के लिए जिसके लिए रिहाइश है, यानी वो जो मौकूफुन अलैह है जिसके लिए रिहाइश की शर्त लगाई गई थी उसके हवाले कर दे। नफी दालिका रियायत अल हक्कैनी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर दोनों के हक की रियायत है। ये जो मकान किराए पर दिया और तामीर और मुरम्मत करवा ली, इसमें दोनों के हक की रियायत है। वाकिफ की भी रियायत हो गई कि ये मकान बाकी रहेगा, तो जब तक बाकी है उसको अजर व सवाब मिलता रहेगा, और मौकूफ अलैह के हक की भी रियायत हो गई कि अब वो इसमें रिहाइश रख सकता है, अब ये मकान जल्दी खराब नहीं होगा। भाई तो कहते हैं लिअन नफी ज़ालिका रियायत अल हक़ैनी, इसलिए क्योंकि इस तामीर और मुरम्मत के अंदर दोनों के हक की रियायत है, हक़ुल वाकिफी व हक़ु साहिबि सुकना, वाकिफ का हक और रिहाइश वाले का हक, दोनों के हक की रियायत है। लिअन्नहु लौलम यअमुरहा, इसलिए क्योंकि अगर काजी इसको तामीर न करवाता, तफूतु सुकना असलन, तो रिहाइश सिरे से ही फौत हो जाती, रिहाइश सिरे से ही खत्म हो जाती। वल अव्वलु औला, और पहली सूरत बेहतर है। एक है कि हाकिम इसको किराए पर दे और तामीर करवा दे, और दूसरी सूरत है हाकिम तामीर न करवाए, तो तामीर करवाना औला है कि इसमें दोनों के हक की रियायत है, और तामीर नहीं करवाएंगे फिर तो यह मकान खराब हो जाएगा, तो फिर दोनों का हक फौत हो जाएगा, ना तो इसमें रिहाइश रखी जा सकेगी और ना ही वाकिफ को इसका अजर व सवाब मिलेगा। भाई तो कहते हैं वल अव्वलु औला, और पहली सूरत बेहतर है, यानी तामीर करवाना बेहतर है। वला युजबरुल मुमतनिउ अलल इमारती, और वो जो रुकने वाला है उसको तामीर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जैद ने इमारत वक्फ की है अमर की रिहाइश के लिए, और अमर के बाद फिर दीन पढ़ने वाले तलबा के लिए, तो अब अमर के पास माल मौजूद है, लेकिन वो इस पर मकान की तामीर और मुरम्मत पर खर्च नहीं कर रहा, तो क्या उसको काजी मजबूर कर सकता है, जबरन उससे तामीर और मुरम्मत करवाई जा सकती है? कहते हैं नहीं, उसको जबरन मजबूर नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई भाई? वजह यह है कि यह तामीर और मुरम्मत करवाएगा तो इसके अंदर उसका माल खर्च होगा, उसका माल हलाक होगा, और किसी को अपने माल के हलाक करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये शरीयत का अहम ज़ाबता है कि किसी को भी अपना माल खर्च करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। यहां भी ये जो मौकूफ अलैह है जिसके लिए रिहाइश की शर्त लगाई गई है, अगर ये इस पर खर्च करेगा तो इसका माल खर्च होगा, इसका माल हलाक होगा, लिहाजा काजी भी उसको इस पर मजबूर नहीं कर सकता। तो ये बीज वाले के मुशाबे हो गया जो मुजारात के अंदर होता है। याद रखो, दो आदमी आपस में अकदे मुजारात कर लेते हैं कि हम मिलजुल कर खेती बाड़ी करेंगे और जो पैदावार हासिल होगी उसको हम दोनों आपस में तकसीम करेंगे। तो ये जो मुजारात है इसके अंदर एक के लिए बीज की शर्त लगाई गई कि बीज ये वाला आदमी लाएगा, उसने कबूल कर लिया कि बीज मेरे जिम्मे है, मैं बीज लाऊंगा, लेकिन फिर बाद में यह बीज वाला उस अकद से रुक गया, उसने कहा नहीं मैं ये खेती बाड़ी नहीं करूंगा। अब हालांकि उसने आकद किया हुआ है, और जब आकद कर लिया जाए तो उस आकद पर अमल करना पड़ता है, लेकिन यहां पर बीज वाला अगर इस आकद पर चलने से रुक जाए तो काजी भी उसको मजबूर नहीं कर सकता कि तुम्हें इस आकद पर चलना पड़ेगा, तुमने खुद आकद किया था। वजह यह कि यहां बीज वाले को अपना बीज खर्च करना पड़ेगा, और किसी भी इंसान को अपना माल खर्च करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो यहां पर इस अकद पर चलने में बीज वाले का बीज हलाक हो रहा है, उसका माल खर्च हो रहा है, तो लिहाजा उसको इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर वो अपनी मर्जी से तैयार होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जबरन उसको इस पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वला युजबरुल मुमतनिउ अलल इमारती, और वो शख्स जो रुक गया है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता तामीर और मुरम्मत पर, लिमा फीहि मिन इतलाफी मालिही, इस वजह से कि इसके अंदर इसके माल का तलफ करना है, इसको अपना माल हलाक करना पड़ेगा। फअशबहम तेना असाहिबिल बजरी, तो ये मुशाबे हो गया बीज वाले के रुकने के, फिल मुजारात में इसका खर्च करने से रुकना, यह बीज वाले के मुशाबे हो गया जब वो मुजारात पर चलने से रुक जाए भाई। तो कहते हैं फअशबहम तेना असाहिबिल बजरी फिल मुजाराती, तो ये मुजारात के अंदर बीज वाले के रुकने के मुशाबे हो गया। फला यकूनुम तेनाउहु रिजम मिनहु, ये एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज ये कि इस इमारत की रिहाइश की शर्त लगाई गई थी अमर के लिए, यह इमारत वक्फ की गई और अमर की रिहाइश की शर्त लगाई गई थी कि अमर इसमें रिहाइश रखेगा। जब अमर इसकी तामीर और मुरम्मत पर खर्च नहीं कर रहा, मालूम हुआ वो अपना हक छोड़ रहा है, वो इस इमारत में नहीं रहना चाहता, वो इस इमारत में नहीं रहना चाहता, लिहाजा हाकिम इस इमारत को किराए पर देगा और आमदनी से तामीर और मुरम्मत करवा लेगा, और फिर चाहिए कि हाकिम ये इमारत दोबारा उस मौकूफ वाले को न दे, क्योंकि वह अपना हक बातिल कर चुका है। उसने खुद ही जब खर्च करने से इनकार किया, मालूम हुआ वो इस मकान में रहना नहीं चाहता जी। तो लिहाजा फिर तामीर और मरम्मत के बाद अब ये मकान उसके हवाले नहीं करना चाहिए। कहते हैं नहीं, उसका रुकना और बाज रहना वो उसमें तरद्दुद है, हो सकता है वो वाकई इस मकान में रहना नहीं चाहता इसलिए खर्च नहीं कर रहा, और हो सकता है वो इसलिए खर्च नहीं कर रहा कि अपना माल बचाना चाहता है भाई, वो चाहता है कि काजी कोई सूरत निकाल ले, वो खर्च कर दे और मुझे खर्च न करना पड़े। लिहाजा उसका तामीर और मुरम्मत से रुकना यह कतई नहीं है कि वह अपना हक बातिल कर रहा है, बल्कि इसमें दो एहतमाल आ गए, हो सकता है अपना हक छोड़ रहा हो और हो सकता है वह अपना माल बचा रहा हो भाई। लिहाजा तरद्दुद की वजह से अब यह नहीं कहा जा सकता कि इसका हक बातिल हो गया है, अब इसके हवाले न किया जाए, बल्कि फिर भी इसी के हवाले किया जाएगा। तो कहते हैं फला यकून हम तिना उहू, लिहाजा इस मौकूफ अले का रुकना नहीं होगा। रिजम मिन हू, उसकी तरफ से रजामंदी भी बुतला ने हक ही, अपने हक के बातिल होने की। मौकूफ अले का तामीर और मुरम्मत से रुकना यह अपने हक के बातिल होने पर रजामंदी नहीं होगी। तो कहते हैं फला यकून उमतिना उहू रिजम मिन हू भी बुतला ने हक ही, लिहाजा इस मौकूफ अले का तामीर और मुरम्मत से रुकना यह अपने हक के बातिल होने पर रजामंदी नहीं होगी। ले अनहू फी हयज तरद्दुदी, इसलिए क्योंकि ये रुकना जो है ये तरद्दुद के महल में है। हयज का माना महल भाई, जगह भाई। ले अनहू फी हयज तरद्दुदी, इसलिए क्योंकि इसका खर्च करने से रुकना यह तरद्दुद के महल में है। यहां दो एहतमाल हैं, हो सकता है यह अपना हक छोड़ रहा हो और हो सकता है यह अपना माल बचा रहा हो। तो कहते हैं लिअन्नहु फी हय्यिज तरद्दुदी, इसलिए क्योंकि यह रुकना जो है यह तरद्दुद के महल में है। वला यसहु इजारतु मन लहु सुकना लिअन्नहु गैरु मालिकिन, यह एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह कि आपने कहा कि अगर मौकूफ अल इस पर खर्च नहीं करता तो काजी उससे ले लेगा और काजी किसी को किराए पर दे देगा, तो भाई मौकूफ अले खुद ही किसी को किराए पर दे दे, मौकूफ अले क्या करे, खुद ही यह मकान किसी को किराए पर दे दे और किराया जब आ जाए तो फिर तामीर और मुरम्मत करवा ले। कहते हैं नहीं, मौकूफ अले को यह हक नहीं है, वो इसको किराए पर नहीं दे सकता, वो इसको किराए पर नहीं दे सकता क्योंकि वो इस मकान का मालिक नहीं है। उसके लिए सिर्फ मुनाफे मुबाह किए गए हैं कि आप इस मकान में रहना चाहते हैं तो आप इसमें रहें भाई, बात समझ में आ गई। तो वो इस मकान का या इसके मुनाफे का मालिक नहीं, लिहाजा वो किसी को किराए पर ये मकान नहीं दे सकता। तो कहते हैं वला यसहु, और सही नहीं है इजारतु मन लहु सुकना, वो शख्स जिसके लिए रिहाइश है उसका किराए पर देना, जिस शख्स के लिए रिहाइश है उसका किराए पर देना सही नहीं। तो कहते हैं वला यसहु इजारतु मन लहु सुकना, और जिस शख्स के लिए रिहाइश है उसका किराए पर देना सही नहीं है। लिअन्नहु गैरु मालिकिन, क्योंकि वो मालिक नहीं है, क्योंकि वो ना इस वक्फ का मालिक है और ना इसके मुनाफे का मालिक है। इस पर इश्काल होता है कि यह रिहाइश की शर्त तो इसी मौकूफ अल यानी अमर के लिए लगाई गई थी कि अमर इस मकान में रहा करेगा जी। तो लिहाजा अमर के लिए जायज होना चाहिए कि वो आगे भी किसी को किराए पर दे सके, क्योंकि रिहाइश इसका हक है, इसकी मर्जी है किसी और को रिहाइश दे दे और किराया लेता रहे। जैसे जैसे एक शख्स जो है वो एक मकान किराए पर ले लेता है, मसलन आपने एक मकान किराए पर ले लिया एक महीने के लिए और आपने एक महीने का किराया भी अदा कर दिया, तो याद रखिए आप हुए मुस्ताजिर भाई, उजरत पर उस मकान को लेने वाले। आपके लिए जायज है, आप ये मकान आगे किसी और को भी किराए पर दे सकते हैं एक महीने के लिए। तवज्जो है, तो लिहाजा मुस्ताजिर जो होता है, जो एक मकान किराए पर ले लेता है, उसके लिए जायज होता है, वो उस मकान को आगे किसी और को भी किराए पर दे सकता है। तो जब मुस्ताजिर जिसने मकान किराए पर लिया है, यानी जिसके लिए इस मकान की रिहाइश है, जब वो मकान आगे किराए पर दे सकता है, तो मौकूफ अलै के लिए जब एक मकान की रिहाइश की शर्त लगा दी गई, तो मौकूफ अलै के लिए भी जायज होना चाहिए वो आगे किसी और को ये मकान किराए पर दे सकता है। कहते हैं नहीं भाई, आप इस मौकूफ अलै को मुस्ताजिर पर कयास नहीं कर सकते। वजह यह कि मुस्ताजिर ने उजरत अदा की है, वो इस मकान की रिहाइश का मालिक बन गया है, वो इस मकान के मुनाफे का मालिक बन गया है उजरत अदा करके, जबकि मौकूफ अलै जो है वो इस इमारत की रिहाइश का मालिक नहीं है। उसके लिए रिहाइश मुबाह की गई है कि आप रहना चाहते हो तो आप रह लें। तवज्जो है, तो मुस्ताजिर वो मुनाफे का मालिक बन जाता है, और ये मौकूफ अलै मुनाफे का मालिक नहीं है बल्कि सिर्फ उसके लिए मुनाफे मुबाह हैं। तो जब इसके लिए मुबाह हैं तो ये आगे किसी और को किराए पर नहीं दे सकता, और मुस्ताजिर जब मुनाफे का मालिक बन गया तो ये मुनाफे तो उसके हो गए, अब उसकी मर्जी है किसी और को आगे इन मुनाफे का मालिक बना दे और ये मकान आगे किसी को किराए पर दे दे। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, قال ومن هدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه। भाई यहां से साहिब हिदायत आपको यह बतलाएंगे कि अगर वक्फ की जो इमारत है उसमें से कोई चीज गिर जाती है, टूट जाती है, अलग उखड़ जाती है, तो फिर याद रखो अगर हाजत और जरूरत है तो उसी को लगवा लिया जाएगा, और अगर फिलहाल उसकी हाजत और जरूरत नहीं तो काजी और हाकिम उसको संभाल कर रख लेगा, और जब जरूरत पेश आएगी फिर इसको लगवा लेगा। और अगर वो चीज ऐसी है कि अब उसको दोबारा नहीं लगवाया जा सकता तो फिर उसको बेच दिया जाएगा, और उसके समन जो है वो फिर उसकी तामीर और मुरम्मत में लगवा दिए जाएंगे। लेकिन यह जायज नहीं है कि वह चीज जो उखड़ी है या गिरी है वो उन्हीं फुकरा को दे दी जाएं जिनके लिए ये वक्फ है, उनको ये चीजें दे दी जाएं, या उन चीजों को बेचकर उनके समन फुकरा को दे दिए जाएं। नहीं, ये जायज नहीं है, क्योंकि फुकरा का जो हक है वो इस वक्फ के मुनाफे हैं। ऐन वक्फ जो है, वक्फ की इमारत और उसके अज्जा हैं, वो फुकरा का हक नहीं है बल्कि वो तो अल्लाह का हक है भाई। तो लिहाजा जब यह फुकरा का हक नहीं है तो यह फुकरा के हवाले भी नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं, قال صاحب قدوری फरमाते हैं, ومن هدم من بناء الوقف وآلته ان هدم ينهدم के माने हैं गिरना, من بناء الوقف बिना कहते हैं इमारत को। कहते हैं قال صاحب قدوری फरमाते हैं, ومن هدم من بناء الوقف और वो जो वक्फ की इमारत गिर जाए, وآلته और इसी तरह वक्फ कोई कोई आला वगैरह कोई चीज दरवाजे या खिड़कियां वगैरह गिर जाए निकल आए, तो सरफहुल हाकिम फी इमारतिल वक्फ तो हाकिम उसको उसी वक्फ की तामीर और मुरम्मत में खर्च कर देगा, इन इहताज इलैही अगर उसको हाजत हो जरूरत हो, व इन इस्तुगनिया अनहु और अगर इससे बेनियाजी हो यानी खर्च करने की फिलहाल जरूरत ही नहीं है, तो अमसकहु तो हाकिम और काजी उसको रोक लेगा, हत्ता यहताज इला इमारतिही यहां तक कि वह मोहताज हो जाए तामीर और मुरम्मत का, यानी फिलहाल तो जरूरत नहीं लेकिन बाद में किसी वक्त तामीर और मुरम्मत की जरूरत पेश आएगी तो फिर उस वक्त इनको वहां लगवा दे भाई। तो कहते हैं, व इन इस्तुगनिया अनहु और अगर तामीर और मुरम्मत से फिलहाल बेनियाजी है यानी फिलहाल तामीर की कोई जरूरत नहीं, तो अमसका हो तो काजी उसको रोक लेगा, हत्ता यहताज इला इमारती ही यहां तक कि वह मोहताज हो उसकी तामीर और मुरम्मत का, फया सरीफ हो फीहा तो फिर उसके अंदर इसको वो खर्च कर दे, लिअन्नहु लाबुद्द मिनल इमारती इसलिए क्योंकि वक्फ की तामीर और मुरम्मत जरूरी है, लियबका अला ताबीदी ताकि ये वक्फ हमें हमेशा बाकी रहे, फयहसूला मकसूदुल वाकिफी तो वक्फ करने वाले का मकसद हासिल होता रहे। जब वक्फ हमेशा रहेगा तो इसका नफा सदका होता रहेगा और वाकिफ को अजर सवाब मिलता रहेगा। तो कहते हैं ताकि वक्फ हमेशा रहे, फयहसुल मकसूदुल वाकिफी, तो वाकिफ का मकसूद हासिल होता रहेगा, फइन मस्सतिल हाजतु इलैहि फिलहाली, अगर फिलहाल ही इसकी हाजत पेश आ जाए तो सरफहा फीहा, तो फिर इन चीजों को उसी वक्फ के अंदर वो हाकिम खर्च कर देगा, व इल्ला अमसकहा, और अगर ऐसा ना हो यानी फिलहाल जरूरत नहीं है तो अमसकहा, तो काजी इन चीजों को रोक लेगा, हत्ता ला यतअज़्ज़रा अलैहि ज़ालिका, ताकि कहीं काजी पर यह मुतअज़्ज़िर न हो जाए, अवान अल हाजती, जरूरत के वक्त, फिलहाल अगर जरूरत नहीं है तो संभाल कर रख ले ताकि जरूरत के वक्त काजी के लिए यह ना हो मुश्किल पेश आए, तो जरूरत के वक्त मुश्किल पेश आएगी तो तामीर नहीं हो सकेगी, और जब तामीर नहीं हो सकेगी तो वक्त तो खराब हो जाएगा, और वक्त खराब हो जाएगा तो वाकिफ का मकसूद तो हासिल नहीं होगा। जो कहते हैं वह इल्ला अमसकहा, और अगर ऐसा ना हो यानी फिलहाल जरूरत नहीं है तो काजी उन चीजों को रोक ले, हत्ता ला यतअज़्ज़रा अलैहि ज़ालिका अवान अल हाजती, ताकि जरूरत के वक्त काजी पर यह खर्च करना मुतअज़्ज़िर ना हो, फयबतुल अल मकसूद, फिर तो मकसूद ही फौत हो जाएगा, अगर जरूरत के वक्त चीज ना हुई फिर तो वक्फ का मकसद ही बातिल हो जाएगा। वाकिफ तो चाहता था कि यह वक्फ हमेशा रहे, इसकी आमदनी हमेशा खर्च की जाए ताकि उसको अजर व सवाब मिलता रहे, तो लिहाजा ये जो वक्फ की आलात वगैरह टूट गए हैं इनको काजी या हाकिम संभाल कर रखे और जरूरत के वक्त फिर इनको वक्फ के अंदर लगा दे। भाई बात समझ में आ गई, तो ये माना है व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो कि अब यानी फिलहाल जरूरत नहीं है तो अमसा कहा, तो काजी उसको रोक लेगा, हत्ता ला यतअज़्ज़र अलैहि ज़ालिका, ताकि हाकिम पर ये मुतअज़्ज़िर ना हो जाए, अवान अल हाजती, जरूरत के वक्त, फयबतुल अल मकसूद, फिर तो वाकिफ का मकसद ही बातिल हो जाएगा क्योंकि वक्फ ही बाकी ना रहेगा, जब वक्फ बाकी ना रहेगा तो फिर उसकी आमदनी भी वाकिफ की तरफ से सदका नहीं हो सकेगी। भाई वह इन तअज़्ज़रा इआदतु ऐनिही इला मौज़िइही, और अगर मुतअज़्ज़िर हो जाए ऐन उस चीज को लौटाना अपने मकाम पर, अगर ऐन उस चीज को अपने मकाम पर लौटाना मुमकिन न रहे, वो चीज खराब हो गई है, अब किसी काम की ही नहीं रही, तो फिर संभाल कर रखने का कोई फायदा नहीं, बल्कि फिर इसको बेच दे और जो समन आ जाए उसके जरिए वक्फ की तामीर और मुरम्मत करवा दे। तो कहते हैं वह इन तअज़्ज़रा इआदतु ऐनिही इला मौज़िइही, और अगर ऐन उसी चीज को अपने मकाम पर वापस लौटाना मुमकिन ना रहे, बीअ वसुरिफा समनुहु इलल मरम्मति, तो उसको बेचा जाएगा, वसुरिफा समनुहु, और उसके समन को खर्च किया जाएगा, इलल मरम्मति, तामीर और मुरम्मत में, तामीर और मरम्मत में, रम्म या रुम्मु मरम्मतन का माना होता है मुरम्मत करना, ठीक करना, रम्म या रुम्मु मरम्मतन। तो कहते हैं अगर उस चीज को फिर दोबारा लगाना मुमकिन ना हो तो बी उसको बेचा जाएगा, वसूरीफा समनुहु इलल मरम्मती, और उसके समन को खर्च किया जाएगा मुरम्मत करवाने में, सरफन लिल बदली, बदल को खर्च करते हुए, इला मसरिफिल मुबदली, मुबदल के खर्च करने की जगह में। भाई इधर देखिए, मसलन एक दरवाजा उखड़ गया है, खराब हो गया है, तो इसी दरवाजे को यहीं लगवाना चाहिए था, लेकिन ये दरवाजा इतना खराब हो गया है अब इस जगह नहीं लग सकता, तो दरवाजे को बेच देंगे और इसका जो बदल आगे यानी समन वो फिर यहां लगा दिए जाएंगे, तो मुबदल के खर्च करने की जगह यानी दरवाजे की जगह उसका बदल यानी समन को वहां लगा दें। मतलब यह है कि समन के जरिए नया दरवाजा खरीद कर वहां लगवा दिया जाए, तो अव्वलन तो वही दरवाजा जो वक्फ का जुज था उसे लगवाना चाहिए था मगर वो नहीं लग सकता, तो फिर उसे बेचकर उसके समन वहां लगा दिए जाएं नए दरवाजे की सूरत में। बात समझ में आ गई, यह माना है सरफन लिल बदली इला मसरिफिल मुबदली, बदल को खर्च करते हुए मुबदल के खर्च करने की जगह में, वला यजूजु अन यक्सिमहु, और जायज नहीं है कि काजी जो है तकसीम कर दे उसको, यानी निकजा यानी उसके मलबे को, वो जो वक्फ गिर गया है या उसकी कोई चीज गिर गई है तो वो उस मलबे को मुस्तहिकीन वक्फ पर तकसीम करना जायज नहीं है। तो कहते हैं वला यजूज अन यक्सिमहू, और जायज नहीं है कि उसको तकसीम कर दे, यानी निकजा यानी मलबे को। निकज भाई नून है, काफ और ज़ाद है भाई, ये निकज और नुक्ज नून के जम्मे के साथ भी सही और नून के कसरा के साथ भी सही है, और ये मलबे को कहते हैं। तो कहते हैं वला यजूज अन यक्सिमहू यानी निकजा, और जायज नहीं है कि उसको यानी मलबे को तकसीम कर दे, बैन मुस्तहिक्किल वक्फी वक्फ के मुस्तहिकीन में, बैन मुस्तहिक्किल वक्फी असल में था बैन मुस्तहिकीन अल वक्फी, और फिर नून इजाफत की वजह से गिर गया, और फिर या भी इज्तिमाई साकिनैन से गिर गई भाई। तो कहते हैं कि जायज नहीं है कि इस मलबे को तकसीम कर दे, बैन मुस्तहिक्किल वक्फी वक्फ के मुस्तहिकीन में, लिअन्नहु जुज़ुन मिनल ऐनी, इसलिए क्योंकि ये तो ऐन यानी ऐन वक्फ का जुज है, वला हक़ल मौकूफ अलैहिम फीही, और मौकूफुन अलैहिम का इसमें कोई हक नहीं है, फुकरा का तो सिर्फ इसकी आमदनी में हक है या इसके मुनाफे में हक है, उस वक्फ के जुज में उनका कोई हक नहीं। तो कहते हैं लिअन्नहु जुज़ुन मिनल ऐनी, इसलिए क्योंकि ये उस ऐन वक्फ का जुज है, वला हक लिल मौकूफ अलैहिम फीही, और ऐन वक्फ के अंदर तो मौकूफ अलैह का कोई हक नहीं है, वह इन्नमा हक्कुहुम फिल मनाफी, और उनका हक तो सिर्फ मनाफे के अंदर है, वल ऐन हक्कुल्लाह तआला, और ऐन वक्फ जो है वो तो अल्लाह का हक है, वो तो अल्लाह की मिल्कियत है, फला युसरफ इलैहिम गैरु हक्किहिम, लिहाजा उन मुस्तहिकीन पर खर्च नहीं किया जाए गैर हक्किहिम उनके हक के अलावा को, जो उनका हक है वो उन पर खर्च किया जाएगा, जो उनका हक नहीं बनता वो उन पर खर्च नहीं किया जाएगा। तो फला युसरफु इलैहिम गैर हक्किहिम, लिहाजा उन फुकरा पर उनके हक के अलावा को खर्च नहीं किया जाएगा। आगे देखिए, قال واذا جعل الواقف غله الوقف لنفسه او جعل الولايه اليه جاز عند ابي يوسف رحمه الله। अब साहिब हिदायत आपको यह बतलाएंगे कि अगर वक्फ करने वाला वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगा देता है, मसलन एक शख्स कहता है मेरा यह बाग वक्फ है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं इस बाग की आमदनी मैं खाता रहूंगा, मैं इस्तेमाल करता रहूंगा, और मेरे बाद फिर इसकी आमदनी फुकरा पर खर्च की जाए, तो उस वाकिफ ने वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगा दी, चाहे सारी आमदनी की शर्त अपने लिए लगाए, चाहे बाज़े आमदनी की शर्त अपने लिए लगाए कि निसफ आमदनी मैं इस्तेमाल करूंगा और निसफ जो है वो फुकरा पर खर्च की जाए, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फिर सारी आमदनी फुकरा पर खर्च की जाए। तो क्या इस तरह वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना जायज है या नहीं? और इसी तरह अगर वाकिफ जो है यह शर्त लगा दे कि मेरी यह जमीन वक्फ है लेकिन इसका मुतवल्ली और निगरान मैं खुद ही होऊंगा, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तो फरमाते थे कि वक्त को मुतवल्ली के सुपुर्द करना जरूरी है कि किसी दूसरे शख्स को निगरान बनाया जाए और यह वक्फ उसके सुपुर्द कर दिया जाए, लेकिन अगर वाकिफ यह शर्त लगाता है कि मैं खुद ही इस वक्फ का मुतवल्ली होऊंगा तो क्या यह जायज है या नहीं? तो अब वो तफसील बयान फरमाएंगे साहिब हिदाया भाई, तो ये खूब तवील बहस फरमाएंगे, ये तकरीबन एक दो सफे तक ये बहस चलेगी भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं व इदा जअल अल वाकिफ गल्लत अल वक्फ लिनफसी ही, और जब वक्फ करने वाला वक्फ की आमदनी को अपने लिए करार दे दे, और जअल अल विलायत इलैही, या वक्फ की जो विलायत है वो अपने लिए करार दे दे, तो जाज़ इंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ये जायज है। साहिब कुदूरी ने बतला दिया कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक ये दोनों चीजें जायज हैं, वाकिफ अपने लिए वक्फ के आमदनी की शर्त भी लगा सकता है और अपने लिए वक्फ की विलायत की शर्त भी लगा सकता है। तो कहते हैं जाज आइंदा अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक जायज है। काल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब साहिब हिदाया शरा कर रहे हैं और बहस फरमाएंगे और बतलाएंगे कि यहां दो चीजें हैं, एक आमदनी की अपने लिए शर्त लगाना और दूसरा विलायत की अपने लिए शर्त लगाना, तो दोनों पर अलग अलग बहस फरमाएंगे साहिब हिदाया। तो काल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साहिब हिदाया फरमाते हैं, ज़ाकारा फ़सलैनी, के साहिब कुदूरी ने दो फसलें जिक्र की, यानी दो चीजें जिक्र फरमाई, शरत अल गल्लत ली नफ्सी ही, एक तो यह कि वाकिफ ने गल्ले की यानी आमदनी की शर्त लगाई है अपने लिए, वजअल अल विलायत इलैही, और दूसरी चीज यह कि वाकिफ ने विलायत अपने लिए करार दे दी है। अमल अव्वल, तो पहली चीज जो है यानी आमदनी की शर्त लगाना अपने लिए, अब उसकी बहस शुरू हो रही है, और फिर आखिर में जाकर विलायत अपने लिए रखना उसको भी बयान करेंगे। सबसे पहले किसे बयान करेंगे? आमदनी की शर्त वाकिफ अपने लिए लगा दे, चाहे सारी आमदनी की शर्त लगाए चाहे बाज़े आमदनी की। तो कहते हैं अमल अव्वल, तो पहली फसल जो है यानी आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना, फहुवा जाइज़ुन इंदा अबी यूसुफ रहिमहुल्ला, तो ये इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के नजदीक जायज है, वला यजूज़ु अला क़ियास क़ौली मुहम्मदिन रहिमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के कौल पर क़ियास करते हुए यह जायज नहीं है। तो ये इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के नजदीक जायज है, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के कौल पर कियास कर किया जाए तो मालूम होता है ये जायज नहीं होना चाहिए। इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के कौल पर कियास किया जाए तो ये जायज नहीं होना चाहिए। वजह यह कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के नजदीक वक्फ के अंदर शर्त है कि वाकिफ जो है किसी को निगरान और मुतवल्ली मुकरर करे, और यह वक्फ उसके कब्जे में दे दे, उसकी विलायत में दे दे। जब मुतवल्ली के कब्जे में वो वक्फ चला जाएगा तो वाकिफ का हक उससे मुनकते हो जाएगा, वाकिफ का हक उससे मुनकते हो जाएगा, क्योंकि मुतवल्ली ने जब कब्जा कर लिया तो वक्फ ताम हो गया, जब ताम हो गया तो वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया, अब वाकिफ उसमें रुजू भी नहीं कर सकता और उसमें कोई दखल भी नहीं दे सकता। तो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के कौल पर कियास किया जाए तो मालूम होता है कि वाकिफ अपने लिए आमदनी की शर्त लगाए यह जायज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में तो फिर भी वाकिफ का हक जुड़ा हुआ है वक्फ के साथ। वाकिफ जब आमदनी अपने लिए शर्त लगा रहा है तो वाकिफ का हक तो अभी भी मुनक़ति' नहीं हुआ, हालांकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक तो शर्त है कि वक्फ जो है मुतवल्ली के कब्जे में दिया जाए ताकि वाकिफ का हक मुनक़ति' हो जाए, और जब अपने लिए शर्त लगाएगा फिर तो वाकिफ का हक मुनक़ति' नहीं हुआ, लिहाजा यह जायज नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं वला यजूज़ु अला क़ियास क़ौली मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के कौल पर कियास करते हुए यह जायज नहीं है। वह क़ौलु हिलाल राज़ी रहिमहुल्लाह, और यही कौल है हिलाल राज़ी रहिमहुल्लाह का भी, वबिही क़ाल शाफ़ई रहिमहुल्लाह, और इसी के कायल हैं इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह भी। भाई यहां हिलाल राज़ी रहमहुल्लाह का जिक्र आया, याद रखो ये जो हिलाल राज़ी हैं ये इमाम साहब के शागिर्दों के शागिर्द हैं, ये अहनाफ के बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं और इमाम साहब के शागिर्दों के शागिर्द हैं, ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के भी शागिर्द हैं, ये इमाम जुफर रहमतुल्लाह के भी शागिर्द हैं, और इसी तरह इमाम साहब के और बाद शागिर्दों के भी ये शागिर्द हैं और बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं अहनाफ के, और ये बसरा में रहते थे, ये बसरा में रहते थे, बसरा वाले थे। तो यहां जो आया हिलाल राज़ी, याद रखो ये जो राज़ी है ये शहर रै के रहने वाले को राज़ी कहते हैं। रै एक शहर है, आज भी ईरान के अंदर मौजूद है, उसका नाम क्या है? रै। रै उस शहर का नाम है, और जैसे लाहौर के रहने वाले को लाहौरी कहते हैं इसी तरह रै के रहने वाले को राज़ी कहते हैं। रै के रहने वाले को राज़ी कहते हैं। राज़ी का क्या माना? शहर रै वाला, शहरे रह वाला। तो शारहीन फरमाते हैं कि ये जो आया वह हुआ कौलु हिलाल राज़ी, कि ये हिलाल राज़ी का कौल है, कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है, ये हिलाल राज़ी नहीं है, ये रह के रहने वाले नहीं थे, ये तो बसरा के रहने वाले थे, ये बसरा के रहने वाले थे, तो असल में ये हिलाल राई कहलाते थे। भाई रायुन, एक आदमी के एक मसले में एक राय होती है, एक चीज के अंदर उसका एक मजहब होता है, उसको क्या कहते हैं? राय। और इसी राय की तरफ निस्बत कर दें रायुन, राय वाला, राय वाला। तो ये जो हिलाल हैं ये हिलाल राई हैं भाई, यानी राय वाले हिलाल भाई, और ये इस नाम से मशहूर हो गए, कहते हैं अपनी वुसअत इल्मी की वजह से, अल्लाह ने इनको बहुत इलम नसीब फरमाया था तो वुसअत इलम की वजह से ये हिलाले राय के नाम से मशहूर हो गए, यानी इतना इलम है हर चीज के बारे में ये राय रखते हैं, यानी इनके पास इलम मौजूद है भाई। बात समझ में आ गई। इस वजह से ये हिलाल राई के नाम से मशहूर हो गए। जबकि बास कहते हैं कि ये रहते तो बसरा में थे लेकिन इनकी राय और मजहब वो था जो कूफा वालों का था, यानी इमाम साहेब का जो शहर है। तो चूंकि इनकी राय और मजहब कूफा वालों का था इसलिए ये हिलाल राई के नाम से मशहूर हो गए, वो हिलाल जो राय वाले हैं, यानी कूफा वालों के मजहब वाले हैं। अब कूफा के मजहब वालों से क्या मुराद है, आम किताबों में इसकी सराहत नहीं, लेकिन जाहिर यही मालूम होता है कि या तो ये इमाम साहब के मजहब की तरफ निस्बत है कि ये कूफा वालों के मजहब पर हैं, यानी इमाम साहब के मजहब पर हैं, लेकिन ज्यादा मुनासिब ये है कि यूं कहा जाए कि ये जो कूफा और बसरा वाले थे इनके नहवियों में आपस में इख्तिलाफ था, इनका आपस में इख्तिलाफ है। तकरीबन 110 के लगभग मसाइल हैं जिनमें कूफा और बसरा वाले इख्तिलाफ करते हैं। कूफा वालों की राय एक होती है, बसरा वालों की राय दूसरी होती है। तो ये रहते तो बसरा में थे लेकिन चूंकि बहुत बड़े आलिम थे तो जाहिर सी बात है बड़े फकीह भी हैं, बड़े मुहद्दिस भी होंगे, तो इसी तरह नहव के मसाइल के भी माहिर होंगे, लेकिन उसके अंदर इनकी राय रहते तो बसरा में थे लेकिन इनकी राय बसरा वालों जैसी नहीं थी बल्कि कूफा वालों की राय के मुताबिक थी, तो इसलिए इनको हिलाल राई कहते थे। ज्यादा करीने कियास यही है, ज्यादा करीने कियास यही है भाई। लेकिन बहरहाल यह भी इहतमाल है, हो सकता है इमाम साहब के मजहब पर होने की वजह से इनको हिलाल राई कहा जाता हो, और बाजों ने जिक्र किया कि इनकी वसात इल्मी की वजह से इनको राई कहा जाता था भाई। तो बहरहाल बताने का मकसद यह है कि ये जो वो आया हिलाल राजी ये दुरुस्त नहीं है, ये हिलाल राई है भाई। तो कहते हैं वला यजूज़ अला कियास कौल मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल के कियास पर जायज नहीं है। वह कौल हिलाल राजी रहिमहुल्लाह, और यही कौल है हिलाल राई का भी। वह बिही काल शाफी रहिमहुल्लाह, और इसी के कायल हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी। वकीला, अब आगे तफसील बयान करेंगे। मसला चल रहा है कि वाकिफ वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगा सकता है या नहीं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अपने लिए यह शर्त लगा सकता है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल के कियास पर यह शर्त वो नहीं लगा सकता भाई। तो अब आगे आपको बतलाएंगे कि बास वो कहा फरमाते हैं कि ये जो इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का इस मसले के अंदर इख्तिलाफ है, इस इख्तिलाफ की बुनियाद एक और इख्तिलाफ पर है, और वो जो कब्जे और इफराज वाला इख्तिलाफ पीछे जिक्र हो चुका, कब्जे और इफराज वाला, अफराजा युफरीजु, इफराज का माना अलग करना। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुशा का वक्फ जायज नहीं है बल्कि वक्फ को अलैदा करना और मुतवल्ली के कब्जे में देना यह उनके नजदीक शर्त है, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का अलैदा करना और मुतवल्ली के कब्जे में देना शर्त नहीं है। तो चूंकि ये जो कब्जे और इफराज के अंदर दोनों का इख्तिलाफ है, इसी वजह से आमदनी अपने लिए शर्त लगाने के अंदर भी दोनों का इख्तिलाफ हुआ। तो बाज़ फुकहा क्या फरमाते हैं, वक्फ की आमदनी के अपने लिए शर्त लगाना यह जो साहिबैन का आपस में इख्तिलाफ है, इसकी बुनियाद दूसरे इख्तिलाफ पर है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ के अंदर कब्जा और इफराज शर्त है और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक कब्जा और इफराज शर्त नहीं। तो इस इख्तिलाफ की बुनियाद उस इख्तिलाफ पर है भाई, जबकि बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि नहीं, इस इख्तिलाफ की बुनियाद उस इख्तिलाफ पर नहीं है, यह एक अलग मसला है, यह एक अलग नया मसला है, और इसकी दलील भी अलग है भाई, इसकी दलील भी अलग है भाई। देखिए भाई, तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है इन नल इख्तिलाफ बैनहुमा, कि ये जो इख्तिलाफ है साहिबैन के दरमियान, बिना उन अल इख्तिलाफ ही, इसकी बुनियाद उस इख्तिलाफ पर है, फिश्तिरात इल कब्ज़ी वल इफराजी, जो कब्जे और इफराज के शर्त में है, कब्जे और इफराज की शर्त में है। वकीला, और कहा गया है ही मसअलतुम मुबतदअतुन, कि ये एक नया मसला है, ये अलग मसला है, इस इख्तिलाफ की बुनियाद उस इख्तिलाफ पर नहीं है बल्कि ये अलग मसला है और इसकी अलग दलील है भाई। तो कहते हैं ये अलग मसला है। वल खिलाफु फीमा इदा शरतल बाज़ा लिनफ्सिही, यहां से आपको बतलाएंगे कि जो साहिबैन का आपस में इख्तिलाफ है, ये वाकिफ चाहे बाज़े आमदनी की अपने लिए शर्त लगाए कि बाज़े आमदनी मैं लूंगा और मेरे बाद फुकारा लेंगे, या चाहे सारी आमदनी की अपने लिए शर्त लगाए कि मैं सारी आमदनी लूंगा और जब मैं मर जाऊं तो फिर फुकारा पर खर्च करना, तो दोनों दोनों बराबर हैं। यहां दोनों चाहे बास की शर्त अपने लिए लगाए चाहे सारी आमदनी की अपने लिए शर्त लगाए, दोनों के अंदर इख्तिलाफ है भाई। ये नहीं कि एक तो जायज हो दोनों के नजदीक और एक में इख्तिलाफ है, नहीं, दोनों के अंदर इख्तिलाफ है। तो कहते हैं वल खिलाफ उफीमा इदा शरत अल बाज अली नफसी ही, और ये जो इख्तिलाफ है उस सूरत में कि जब अपने लिए बाज की शर्त लगाई, फी हयाती ही अपनी जिंदगी में, व बाद मौती ही लिल फुकराई, और अपने मरने के बाद फुकरा के लिए एक सूरत, इसके अंदर जो इख्तिलाफ है, और इसी तरह वफीमा इदा शरतल कुल ली नफसी ही, और उस सूरत में कि जब उसने सारी आमदनी की शर्त अपने लिए लगा दी, फी हयाती ही अपनी जिंदगी में, व बाद मौती ही लिल फुकराई, और मौत के बाद फुकरा के लिए। इन दोनों सूरतों में जो इख्तिलाफ है सवा उन, ये बराबर है, यानी दोनों में एक जैसा इख्तिलाफ है, चाहे बाज़े आमदनी की अपने लिए शर्त लगाए चाहे सारी आमदनी की। तर्जमा एक दफा फिर देख लीजिए, वल खिलाफ उफीमा इदा शरत अल बाज़ अली नफसी ही, और इख्तिलाफ उस सूरत में जब बाज़े आमदनी की शर्त अपने लिए लगाई, फी हयाती ही अपनी जिंदगी में, व बाद मौती ही लिल फुकराई, और मौत के बाद फुकरा के लिए, वफीमा इदा शरत अल कुल ली नफसी ही, और इख्तिलाफ उस सूरत के अंदर के जब सारी आमदनी की शर्त अपने लिए लगा दी, फी हयाती ही अपनी जिंदगी में, व बाद मौती ही लिल फुकराई, और मौत के बाद फुकरा के लिए, सवा उन, ये इख्तिलाफ बराबर है, यानी दोनों सूरतों में एक जैसा है। वलौ वकफा वशरत अल बाज़ा, अब दूसरी सूरत आ गई, एक शख्स है उसने अपना बाग वक्फ कर दिया कि इस बाग की आमदनी मेरे मुदब्बरों और मेरी उम्महाते औलाद पर खर्च की जाए, मेरे मुदब्बरों और मेरी उम्महाते औलाद पर खर्च की जाए। आप जानते हैं मुदब्बर वो गुलाम है जिसे आका ने कह दिया कि मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो, और उम्मे वलद वो बांदी है जिसने बच्चे को जन्म दिया और आका ने इकरार कर लिया कि ये बच्चा मेरा है, तो ये बांदी उसकी उम्मे वलद बन जाएगी और ये भी आका के मरने के बाद आजाद हो जाएगी। तो अगर एक शख्स ने एक बाग वक्फ किया और यह शर्त लगा दी कि इस बाग की आमदनी मेरी उम्महाते औलाद जो हैं और मेरे जो मुदब्बर हैं उन पर खर्च की जाएगी जब तक वो जिंदा हैं, और जब उनका इंतकाल हो जाए तो फिर उसकी आमदनी फुकरा पर खर्च की जाए, तो इसमें बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि यह जायज है बिल इत्तेफाक, यानी इसमें साहिबैन का इत्तेफाक है कि वक्फ की आमदनी की शर्त अपने मुदब्बर और उम्महाते औलाद के लिए जायज है, जबकि बास कहते हैं नहीं, इसमें भी इख्तिलाफ है, इसलिए क्योंकि अपने मुदब्बर और अपनी उम्महाते औलाद के लिए आमदनी की शर्त लगाना ये इसी तरह है जैसे अपने लिए शर्त लगा रहा है, क्योंकि मुदब्बर और उम्महाते औलाद का खर्चा किस पर आता है, आका पर आता है, तो उन पर खर्च करना भी इसी तरह है जैसे आका के लिए खर्च हो रहा है भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलव वकफा, और अगर किसी ने कोई चीज वक्फ की, वशरत अल बाज़ा अविल कुल्ला, और उसकी बाज़े आमदनी या सारी आमदनी की शर्त लगा दी, लि उम्महाति औलादी ही व मुदब्बरी ही, अपनी उम्महाते औलाद और अपने मुदब्बरों के लिए, मा दामू अहिया, जब तक वो जिंदा हैं कि उन पर खर्च किया जाए, फैदा मातू फहुआ लिल फुकरा इवल मसाकिनी, जब वो मर जाए तो फिर ये वक्फ फुकरा और मसाकिन के लिए है, फकद कील, तो तहकीक कहा गया है, यजूज़ु बिल इत्तिफाक, कि यह बिल इत्तेफाक जायज है, साहिबैन के दरमियान यह बिल इत्तेफाक जायज है। इस कौल को अगर लिया जाए कि अपने उम्महाते औलाद और मुदब्बर के लिए वक्फ की आमदनी की शर्त लगाना बिल इत्तेफाक जायज है दोनों के नजदीक, तो मालूम हुआ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इसमें फर्क किया है, अपने ऊपर खर्च करने की शर्त लगाए तो यह उनके नजदीक जायज नहीं, लेकिन अपने मुदब्बर और उम्महाते औलाद पर खर्च करने की शर्त लगाए तो यह उनके नजदीक जायज है, मालूम हुआ उन्होंने फर्क किया है। तो फुकाहा उसकी वजह बयान फरमाते हैं कि यह इस्तेहसानन भाई, ये इस्तेहसानन है कि ये जो उम्महाते औलाद हैं और ये जो मुदब्बर हैं, इन्होंने आका के मरने के बाद आजाद होना है, इन्होंने आका के मरने के बाद आजाद होना है, तो इनके लिए शर्त लगाना ऐसे ही है जैसे किसी अजनबी के लिए आमदनी की शर्त लगाई जाए, और अजनबी के लिए तो आमदनी की शर्त लगाना जायज है, तो अपने उम्महाते औलाद और मुदब्बर भी अजनबी के दर्जे में हो गए क्योंकि इन्होंने आका के मरने के बाद आजाद होना है, तो इनके लिए भी वक्फ की आमदनी की शर्त लगाना जायज होगा भाई, लेकिन अपने लिए वक्फ की आमदनी की शर्त लगाना जायज नहीं है। यह एक कौल है भाई। तो कहते हैं फकद कील यजूज बिल इतफाक, तो तहकीक कहा गया है कि यह बिल इतफाक साहिबैन के नजदीक जायज है। वकद कील, और तहकीक कहा गया है हुआ अलल खिलाफी ऐजन, कि यह भी इख्तिलाफ पर है, इसमें भी इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमला इसमें भी फरमाते हैं कि अपने मुदब्बर और उम्महात औलाद पर खर्च करना भी इसी तरह है जैसे अपने ऊपर खर्च कर रहा है, लिहाजा यह जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं वकद कील, और कहा गया है हुआ अलल खिलाफी ऐजन, कि यह भी इख्तिलाफ पर है। वह हुआ सहीह, और यही कौल सही है। साहिब हिदायत फरमाते हैं यही कौल सही है, अपनी उम्महात औलाद और मुदब्बर के लिए आमदनी की शर्त लगाने में भी इख्तिलाफ है भाई। तो कहते हैं वह हुआ सहीह, और यही कौल सही है। लिअन्न इश्तिरातहु लहुम फी हयातिही, इसलिए क्योंकि वाकिफ का इनके लिए शर्त लगाना अपनी जिंदगी में, कश्तिरातिही लिनफ्सिही, ये इसी तरह है जैसे ये अपनी जात के लिए शर्त लगा रहा है, और अपनी जात के लिए तो शर्त लगाना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जायज नहीं है भाई। आगे देखिए वजह कौली मोहम्मदिन रहमहुल्लाह, अब इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की वजह जिक्र कर रहे हैं। तवज्जो है, तो बास फुकहा क्या फरमाते हैं, इस इख्तिलाफ की बुनियाद उस कब्जे और इफराज वाले इख्तिलाफ पर नहीं है, बल्कि यह अलग मसला है, इसकी अलग दलील है। चुनांचे अब वो दलील जिक्र करने लगे हैं भाई। तो कहते हैं वजह कौल मोहम्मद रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की वजह यह है कि अन अलवक्फ तबर्रुन अला वजह तमलीकी, कि वक्फ जो है तबर्रो है। मैंने आपको बताया तबर्रो कहते हैं एक चीज अपनी तरफ से अदा करना जो आप पर लाजिम ना हो, यानी आप नफल नमाज अदा करते हैं तो यह तबर्रो है, आप नफली रोजे रखते हैं यह तो आप पर लाजिम नहीं तो यह तबर्रो है, या आप फुकरा पर जकात के अलावा और वैसी ही अपनी तरफ से जायद माल फुकरा को देते हैं तो यह भी तबर्रो है भाई, यह भी तबर्रो है भाई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की वजह जिक्र कर रहे हैं कि उसकी वजह यह है कि अनल वक्फ तबर्रुन, कि वक्फ जो है तबर्रु है, यानी नेकी और एहसान है, एक शख्स अपनी तरफ से एक चीज सदका कर रहा है जो उस पर लाजिम नहीं थी। तो कहते हैं अनल वक्फ तबर्रुन, कि जो वक्फ है यह तबर्रु है, नेकी और एहसान है, अला वजह तमलीक, तमलीक के तरीके पर, कि इसमें मालिक बनाया जाता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वाकिफ जब वो कोई वक्फ करता है तो साहिबैन के नजदीक अल्लाह उस वक्फ के मालिक बन जाते हैं भाई, तो ये तमलीक है, अल्लाह को मालिक बनाना है। तो कहते हैं अन अल वक्फ तबर्रुन, के वक्फ जो है वो तबर्रु है, वो नेकी और एहसान है, अला वजह तमलीकी, मालिक बनाने के तरीके पर, बि तरीके लदी कदम ना हो, उस तरीके पर जो हमने मुकदम जिक्र कर दिया, जो हमने मुकदम जिक्र कर दिया कि अल्लाह को मालिक बनाया जाता है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, और इसके मुनाफे को फुकारा वगैरह पर सदका किया जाता है। बात समझ में आ रही है, फिर देख लीजिए। कहते हैं वजह कौल मोहम्मद रहिमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल की वजह यह है कि अन अल वक्फ तबर्रुन अला वजह तमलीकी, कि वक्फ जो है वो नेकी और एहसान है अल्लाह को मालिक बनाने के तरीके पर, बि तरीके लदी कदम ना हो, उस तरीके पर जो हमने मुकदम कर दिया कि इसके लिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करना मकसूद होता है। फश्तेरा तुलबाज अबिल कुल ली नफसी ही, तो बाज वक्फ की या सारे वक्फ की अपने लिए शर्त लगाना, युब लूहू, ये इस वक्फ को बातिल कर देता है, ये इस वक्फ को बातिल कर देता है भाई। क्यों? कहते हैं लि अन तमली कमी नफसी ही ला यतहक्ककु, इसलिए क्योंकि अपने आप को मालिक बनाना ये तो साबित नहीं हो सकता, अपने आप को मालिक बनाना साबित नहीं हो सकता। तो जो है मालिक किसी और को बनाया जाता है, वक्फ करने वाला तो पहले से ही उस चीज का मालिक है, तो उसमें किसी और को मालिक बनाया जाता है, यानी अल्लाह ताला को मालिक बनाया जाता है, खुद अपने आप को मालिक बनाना यहां हो ही नहीं सकता क्योंकि खुद तो ये पहले से ही मालिक है उसका। तवज्जो है, तो वक्फ में तमलीक होती है, और तमलीक दूसरे पर हो, दूसरे को मालिक बनाया जा सकता है, अपने आप को मालिक नहीं बनाया जा सकता। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं फश्तेरा तुहुल बाजा अबिल कुल्ल लिनफ्सी ही, तो बाजे वक्फ की या सारे वक्फ की अपने लिए शर्त लगाना, युबतिलुहु, ये वक्फ को बातिल कर देता है, लिअन्न तमलीक मिन नफ्सी ही ला यतहक्ककु, इसलिए क्योंकि अपने आप को मालिक बनाना यह तो साबित नहीं हो सकता। फसारा कस्सदकतिल मुनफ्फजती, तो यह सदका मुनफ्फजा की तरह हो गया। व शर्त बाजी बुकातिल मस्जिद लिनफ्सी ही, और मस्जिद के बाजे टुकड़े की अपने लिए शर्त लगाने की तरह हो गया। भाई देखिए, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है कि वक्फ की आमदनी की अपने लिए शर्त लगाना यह तो इसी तरह हो गया जैसे एक शख्स फकीर को 10 दिरहम देता है कि ये 10 दिरहम मैंने तुम्हें सदका कर दिए, लेकिन इसमें से 5 दिरहम मेरे हैं। मैंने तुम्हें 10 दिरहम सदका कर दिए लेकिन इसमें से 5 दिरहम मेरे हैं। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, अपने लिए सदके की शर्त नहीं लगाई जा सकती, सदके का मालिक तो फकीर को बनाया जाता है। या ये इसी तरह है जैसे एक आदमी कहता है मेरी ये जो जमीन है ये मैंने मस्जिद के लिए वक्फ कर दी और इस मस्जिद का एक टुकड़ा मेरा होगा। ये जमीन मैंने मस्जिद के लिए वक्फ कर दी और इस मस्जिद का एक टुकड़ा मेरे लिए होगा। तो जिस तरह मस्जिद के एक टुकड़े की अपने लिए शर्त लगाना सही नहीं है, या जिस तरह सदके के कुछ हिस्से की अपने लिए शर्त लगाना सही नहीं है, इसी तरह वक्फ की आमदनी की शर्त भी अपने लिए लगाना सही नहीं है भाई। तो कहते हैं फसार कसदकतिल मुनफजती, तो ये अपने लिए शर्त लगाना ऐसे ही हो गया जैसे कि सदका मुनफजा है कि उसके अंदर शर्त लगाई जाए। सदका मुनफजा मैंने बतलाया था, नफजा युनफिज तनफीज का माना है पूरा करना, वो सदका जो पूरा कर दिया जाए जिसमें फकीर को एक चीज का मालिक बना दिया जाए। और ये दरअसल एहतराज है वक्फ से, क्योंकि वक्फ भी सदका है, अलबत्ता वक्फ सदका मौकूफा है, सदका मौकूफा है, वक्फ किया हुआ सदका है, और जिसमें फकीर को मालिक बना दिया जाता है उस चीज का, वो सदका मुनफजा है या वो सदका ममलूका है भाई। तो कहते हैं फसारक सदकतिल मुनफजती, तो ये सदका मुनफजा की तरह हो गया। वशर्ति बाजी बुकतिल मस्जिदी लिनफसी ही, और ये ऐसे ही हो गया जैसे मस्जिद के बाज टुकड़े की अपने लिए शर्त लगाना, और ये जायज नहीं। तो ये इमाम मोहम्मद रहमला की दलील थी, अब इमाम अबू यूसुफ रहमला की दलील आ गई कि ये जायज है कि वक्फ की बाज़े आमदनी या सारी आमदनी की अपने लिए शर्त लगाई जाए भाई। वली अबी यूसुफ रहमला, और इमाम अबू यूसुफ रहमला की दलील यह है, मा रुविया, वो जो रिवायत किया गया है, अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलाम कान याकुलु मिन सदकतिहि, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सदके में से खाया करते थे। वल मुराद मिनहा सदकतुहुल मौकूफतु, और इससे मुराद जो है सदका मौकूफा है कि हुजूर अलैहि सलाम अपने सदका मौकूफा में से खाया करते थे। वला यहिलुल अकलु मिनहा, और सदका मौकूफा से तो खाना जायज नहीं होता, इल्ला बिशर्ती, मगर शर्त लगाने से ही। फदल्ला अला सेहती ही, तो इसने दलालत कर दी शर्त के सही होने पर। तो इस हदीस ने दलालत कर दी कि अपने लिए शर्त लगाना सही है। हुजूर अलैहि सलाम अपने सदके में से खाते थे, और अपने सदके में से तो बगैर शर्त के खाना सही नहीं मालूम हुआ, अपने लिए शर्त लगाना सही है। तो कहते हैं वला यहिलुल अक्लु मिनहा इल्ला बिशर्ती, और सदका मौकूफा में से खाना तो हलाल नहीं होता, इल्ला बिशर्ती, मगर शर्त के जरिए ही। फदल्ला अला सेहती ही, तो इस रिवायत ने दलालत कर दी शर्त के सही होने पर। ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما بيناه। अब ये अकली दलील जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के मजहब के लिए भाई, दलील जिक्र करेंगे। कहते हैं कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वक्फ की अपने लिए शर्त लगाना तो ऐसे ही है जैसे कि अपने आप को मालिक बना रहा है, और अपने आप को तो मालिक नहीं बनाया जा सकता, तमलीक तो गैर की होती है, गैर को मालिक बनाया जाता है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि जब अपने लिए बाज या सारे की शर्त लगाई जाएगी तो माना यह है कि वक्फ है तो अल्लाह ही का ममलूक, वक्फ जो है वो अल्लाह का ममलूक है, और उस अल्लाह के ममलूक की अपने लिए शर्त लगा दी, और अल्लाह के ममलूक की तो अपने लिए शर्त लगाना और उससे नफा उठाना जायज है। अल्लाह के ममलूक की अपने लिए शर्त लगाना या अल्लाह के ममलूक चीजों से नफा उठाना तो जायज है। जैसे आप जंगल में जाते हैं शिकार पकड़ कर लाते हैं, अब ये शिकार ये तो पहले किसी का नहीं था, ये तो अल्लाह का ममलूक था, तो अब आप अल्लाह की ममलूक से नफा उठा रहे हैं, आपने उसको अपने लिए कर लिया। या आप जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं, तो ये लकड़ियां ये तो अल्लाह की ममलूक थी, तो आपने अल्लाह की ममलूक चीजों को अपने लिए कर लिया, अब खुद आप उनसे नफा उठा रहे हैं। तवज्जो है। तो इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते थे कि अगर अपने लिए वक्फ की शर्त लगाएगा तो यह तो अपने आप को मालिक बनाना लाजिम आएगा, और अपने आप को मालिक नहीं बनाया जा सकता। तो इमाम अबू यूसुफ रहमला जवाब देते हैं कि यहां अपने आप को मालिक नहीं बनाया जा रहा, बल्कि वो चीज जो अल्लाह की ममलूक हो चुकी है, वो चीज जो अल्लाह की ममलूक हो चुकी है उसकी अपने लिए शर्त लगा रहा है, और उसकी अपने लिए शर्त लगाना तो सही है भाई। तो कहते हैं वली अन अल वक्फ इजालतुल मिल्की, और इसलिए क्योंकि वक्फ जो है वो मिल्कियत को खत्म करना है, इलल्लाह ताला अल्लाह ताला की जानिब यानी अल्लाह को मालिक बनाना है, अला वजहिल कुर्बति कुर्बत के तरीके पर यानी कि अल्लाह का कुर्ब और सवाब और अजर मकसूद होता है, अला मा बयन्नाहु उस वजह से जो हमने बयान कर दिया, फइदा शरत अल बाज अविल कुल्ल लिनफसिह जब उस वाकिफ ने बाज़ वक्फ की या सारे वक्फ की अपने लिए शर्त लगा दी, फकद जअला मा सार ममलूकन लिल्लाह ताला तो तहकीक वाकिफ ने कर दिया वो जो अल्लाह का ममलूक हो गया था उसको कर दिया, लिनफसिही अपने लिए उसको इसने अपने लिए कर दिया। फिर तर्जमा देख लीजिए, फ़ाइदा शरत अल बाज़ अविल कुल्ल लिनफ्सिह जब वाकिफ ने बाज़ वक्फ को या सारे वक्फ को अपने लिए कर लिया, फ़क़द जअला मा सारा ममलूकन लिल्लाह ताला तो तहकीक वो चीज जो अल्लाह की ममलूक हो गई थी उसको उसने कर दिया, लिनफ्सिह अपने लिए, ला अन यजअला मिल्क नफ्सिह लिनफ्सिह ऐसा नहीं कि अपनी मिल्कियत को अपने लिए कर दिया यानी खुद को उसका मालिक बना दिया, हालांकि मालिक तो गैर को बनाया जाता है, तो यहां अपने आप को मालिक बनाना है ही नहीं, बल्कि वो चीज जो अल्लाह की ममलूक हो गई थी उसकी शर्त अपने लिए लगाई गई है भाई। तो कहते हैं ला अय्यज अलमिल का नफसी ही लिनफसी ही ऐसा नहीं है कि इसने अपनी मिल्कियत को अपने लिए कर दिया है, वहां दा जाइजून और यह तो जायज है, अल्लाह की मिल्कियत को अपने लिए करना जायज है, जैसे मैंने मिसाल जिक्र कर दी कि आप शिकार पकड़कर लाते हैं, जंगल से लकड़ियां लाते हैं, इस जंगल से घास लेकर आते हैं, तो यह देखो अल्लाह की ममलूक चीज को अपने लिए आपने कर लिया भाई। तो कहते हैं वहां दा जाइजून और यह जायज है यानी अल्लाह की ममलूक चीज को अपने लिए करना जायज है, कमा इदा बना खानन औ सिकायतन औ जाला अर्जहू मकबरतन, यहां खान लफ्ज आ रहा है, याद रखो खान सराय को कहते हैं, जैसे आजकल होटल हैं जिनमें मुसाफिर जाकर ठहरते हैं, इसी तरह कदीम जमाने में इसको सराय कहते थे जहां मुसाफिर आकर ठहरा करते थे और वहां मुसाफिरों की सवारियां वगैरह रखने का भी इंतजाम होता था, उनके घोड़े या ऊंट या खच्चर वगैरह भी वहां उनके रखने का इंतजाम होता था। तो एक आदमी सराय बनवाता है और कहता है कि मैं इसमें खुद भी पड़ाव डाला करूंगा, खुद भी मुझे जरूरत पेश आए तो इसमें रहूंगा, या इसी तरह एक आदमी जो है वो पानी की सबील लगाता है, पानी पीने की कोई जगह बनाता है कि मुझे भी जरूरत पेश आएगी तो मैं भी इसमें से पिया करूंगा, या इसी तरह एक आदमी कब्रिस्तान के लिए जमीन वक्फ करता है और यह शर्त जिक्र करता है कि मुझे भी इसमें दफन किया जाए, तो देखो इन चीजों में अपने इस्तेमाल की शर्त लगाना जायज है, इसी तरह वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना जायज है। तो कहते हैं कमा इदा बना खानन जैसे एक एक शख्स ने सराय तामीर की, औ सिकायतन सिकाया कहते हैं पानी पीने की जगह, पानी की सबील भाई, औ सिकायतन या उसने कोई पानी की सबील बनवाई, औ जअला अर्ज़हू मकबरतन या उसने अपनी जमीन को कब्रिस्तान बना दिया, वशारता और ये शर्त लगा दी, अयनजिलहू कि वो खुद भी इस सराय में उतरेगा, इसमें कियाम करेगा, औ यशरबा मिनहू ये शर्त लगा दी कि वो खुद भी इस पानी की सबील से पिएगा, औ युदफना फीही या उसने ये शर्त लगा दी कि उसे खुद भी इस कब्रिस्तान में दफन किया जाए, तो ये जायज है। वली अन्न मकसूद अहुल कुर्बतु, अब ये दूसरी अकली दलील जिक्र कर रहे हैं कि वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना जायज होना चाहिए, वजह यह कि वक्फ के जरिए मकसद जो होता है वह सदका होता है ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, और इंसान का अपने ऊपर खर्च करना भी सदका है, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में आता है, मालूम हुआ अपने लिए शर्त लगाना भी जायज है भाई। तो कहते हैं वली अन्ना मकसूद अहुल कुर्बतु, और इसलिए क्योंकि वक्फ का जो मकसूद है वो अल्लाह की कुर्बत है, वफि सर्फ इला नफसी ही जालिका और अपनी जात पर खर्च करने में भी ये है, वफि सर्फ इला नफसी ही और अपनी जात पर खर्च करने में भी जालिका ये चीज है यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है भाई। काल अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नफकतुर रजुली अला नफसिही सदकतुन, किसी शख्स का अपने ऊपर खर्च करना भी सदका है, किसी शख्स का अपनी जात पर खर्च करना भी सदका है। आगे देखिए, वलौ शरतल वाकिफ अन यस्तब्दिला बिही अर्ज़न उखरा, अब यहां एक दो और छोटे से मसले जिक्र फरमाएंगे साहिब हिदाया। एक शख्स ने एक बाग वक्फ किया लेकिन शर्त लगा दी कि अगर मैंने किसी वक्त चाहा तो इस बाग की जगह मैं दूसरी जमीन वक्फ में दे दूंगा, यह बाग मैं ले लूंगा और दूसरी जमीन दे दूंगा, तो क्या इस तरह वक्त को बदलने की शर्त लगाना जायज है या जायज नहीं? तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह जायज है, ये जायज है, क्योंकि जब वो बदलने की शर्त लगा रहा है मालूम हो वो वक्फ को बातिल नहीं कर रहा बल्कि इसकी जगह और जमीन वक्फ कर देगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत में यही बाग वक्फ हो गया, ये इसकी मिल्कियत से निकल गया और ये जो शर्त इसने लगाई थी वो शर्त बातिल है। वक्फ सही है और शर्त बातिल, क्योंकि ये ऐसी शर्त है जिसकी वजह से मिल्कियत खत्म होने में कोई रुकावट नहीं आ रही, मिल्कियत खत्म होने में कोई रुकावट नहीं आ रही। बाज अवकात तो ऐसी शर्त लगाई जाती है जिसकी वजह से मिल्कियत खत्म होने में ही रुकावट आ जाती है, वाकिफ की मिल्कियत खत्म होती ही नहीं है, जैसे अगले मसले में खियार शर्त के अंदर है। भाई तवज्जो है, तो लेकिन ये जो शर्त है ये ऐसी शर्त है जिसकी वजह से वाकिफ की मिल्कियत खत्म होने में कोई रुकावट नहीं आ रही, लिहाजा जब वो वक्फ करेगा इस शर्त के साथ तो वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाएगी, उसकी विलायत खत्म हो गई और ये जमीन वक्फ हो गई और अब इसको इस पर विलायत ही नहीं, लिहाजा अब वो इस जमीन को बदल नहीं सकता क्योंकि यह जमीन उसकी मिल्कियत से निकल चुकी है। तो वक्फ तो सही हो गया और शर्त जो है वो बातिल हो गई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक शर्त भी सही और वक्फ भी सही है। भाई तो कहते हैं वलौ शरत अल वाकिफ, और अगर वक्फ करने वाले ने शर्त लगा दी, अन यस्तब्दिल बिही अर्ज़न उखरा, कि वो इस वक्फ की जगह दूसरी जमीन बदल देगा, इदा शा अज़ालिका, जब वो ये चाहेगा, वो जब ये चाहेगा वो इस जमीन की जगह, इस वक्त की जगह दूसरी जमीन बदल देगा, तो फहुवा जाइज़ुन इंदा अबी यूसुफ रहमुल्ला, तो ये इमाम अबू यूसुफ रहमुल्ला के नजदीक जायज है, व इंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमुल्ला के नजदीक अल वक्फ जाइज़ुन, ये वक्फ जायज है क्योंकि इस शर्त की वजह से वक्फ बातिल नहीं हो रहा। भाई तो ये वक्फ जायज है, व शर्त बातिलुन, और शर्त बातिल है क्योंकि जब वक्फ कर दिया तो इसकी मिल्कियत से निकल गया, अब ये उसको बदल नहीं सकता, इसको कोई विलायत हासिल नहीं है। भाई वलौ शरत अल खियार अली नफसी ही, अब ये दूसरा मसला जिक्र कर रहे हैं, एक अलग मसला, सूरत मसला ये, एक शख्स ने अपना बाग वक्फ किया कि मेरा ये बाग वक्फ है लेकिन मुझे तीन दिन तक खियारे शर्त है, मैं चाहूं तो तीन दिन के अंदर ये वक्फ जो है इसके रुजू कर सकता हूं, मैं इस वक्फ को खत्म कर सकता हूं। तो अब एक शख्स ने वक्फ के अंदर खियार शर्त लगा दी एक मुअय्यन मुद्दत के लिए, तो क्या यह जायज है या जायज नहीं? तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब वक्फ की आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना जायज है तो वक्फ के अंदर खियार शर्त भी जायज है, लेकिन मुद्दत मालूम होनी चाहिए, अगर मुद्दत मजहूल हुई तो फिर खियार शर्त इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी जायज नहीं है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, यह वक्फ ही बातिल है, वक्फ हुआ ही नहीं, ये वक्फ हुआ ही नहीं। वजह यह है कि आप बाय के मसले में पड़ चुके हैं कि बाय या मुश्तरी जो हैं वो बाज औकात अपने लिए खियार शर्त रख लेते हैं, और याद रखो जब खियार शर्त बाय रखे, मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं लेकिन कहता हूं मुझे इख्तियार है तीन दिन के अंदर अगर मैं इस बेअ को फसख करना चाहूं तो मैं फसख कर सकता हूं, और मुश्तरी इसको कबूल कर लेता है, तो बाय ने खियार शर्त अपने लिए रख ली, और याद रखो बाय जब खियार शर्त रखता है तो मबीहा उसकी मिल्क से नहीं निकलता, वो मबीए का अभी भी मालिक है। बात समझ में आ गई? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं यहां जब वाकिफ ने खियार शर्त अपने लिए रखा है तो वक्फ अभी भी इसकी मिल्कियत से नहीं निकला, जब इसकी मिल्कियत से नहीं निकला तो वक्फ हुआ ही नहीं, वक्फ के अंदर तो मिल्कियत से निकलना जरूरी है। भाई बात समझ में आ गई? तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक अगर वाकिफ अपने लिए खियार शर्त रखे तो यह वक्फ भी बातिल और शर्त भी बातिल है। भाई तो कहते हैं वलौ शरत अल खियार अली नफसी ही फिल वक्फी, और अगर वाकिफ ने अपने लिए खियार शर्त रखा वक्फ में, सलासत अय्यामिन, तीन दिन के लिए, देखो तीन दिन को भी साथ जिक्र किया क्योंकि मैंने बताया कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक खियार शर्त के साथ वक्फ जायज है लेकिन मुद्दत मालूम होनी चाहिए, अगर मुद्दत मालूम नहीं तो फिर यह वक्फ जायज नहीं। भाई तो कहते हैं वलौ शरत अल खियार अली नफसी ही फिल वक्फी, और अगर वाकिफ ने वक्फ के अंदर अपने लिए खियार शर्त रखा, सलासता अय्यामिन, तीन दिन के लिए, तो जाज अल वक्फ व शर्त इंदा अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, तो ये वक्फ और ये शर्त दोनों जायज हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक, व इंदा मुहम्मदिन रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक अल वक्फ बातिल, ये वक्फ बातिल है, जब वक्फ बातिल तो शर्त भी बातिल, उसका भी कोई एतबार नहीं। तो कहते हैं वाइंदा मोहम्मदीन रहमतुल्लाह और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक अल वक्फ बातिल, ये वक्फ बातिल है, वहां दाबीना उन अला मा ज़करना, और ये इख्तिलाफ उस वजह से है जो हमने जिक्र कर दिया, जो हमने जिक्र कर दिया कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुतवल्ली के सुपुर्द करना जरूरी है, और जब खियार शर्त अपने लिए रखा तो वक्फ तो वाकिफ की मिल्कियत से निकला ही नहीं, मुतवल्ली के कब्जे में गया ही नहीं, लिहाजा ये वक्फ बातिल है भाई। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक जायज है, वो फरमाते हैं कि जब अपने लिए आमदनी की शर्त जायज है तो अपने लिए खियार शर्त भी जायज होगा भाई। आगे देखिए वह अम्मा फसलुल विलायती, अब विलायत की बात आ गई भाई, वो जहां से मतन हमने शुरू किया था कि वक्फ करने वाले ने वक्फ की आमदनी की अपने लिए शर्त लगाई, या ये शर्त लगाई कि वक्फ की विलायत मुझे होगी, मैं मुतवल्ली होऊंगा, मैं इसका निगरान होऊंगा, तो आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना, उसकी तफसील तो बयान हो गई। तो दूसरी चीज जो थी कि वाकिफ जो है वक्फ की विलायत अपने लिए मुकरर कर दे, अब उसको साहिबे हिदाया बयान फरमाएंगे। तो कहते हैं अम्मा फसलुल विलायती, बाकी विलायत की जो फसल है, फकद नस्सफी ही अला कौली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, भाई जरा पीछे मतन पर आइए, मतन में साहिब कुदूरी ने फरमाया था वह इदा जाल अल वाकिफ गलत अल वक्फी ली नफसी ही, कि जब वक्फ करने वाला वक्फ की आमदनी की शर्त लगा दे अपने लिए, और जाल अल विलायत इलैही, या वक्फ की विलायत अपने लिए करार दे दे, तो जाजा इंदा अबी यूसुफ रहमला, तो ये इमाम अबू यूसुफ रहमला के नजदीक जायज है। तो देखो साहिब कुदूरी ने इमाम अबू यूसुफ रहमला के कौल की तसरीह कर दी कि उनके नजदीक वाकिफ का विलायत अपने लिए रखना जायज है भाई। अब आइए सबक पर, कहते हैं वह अम्मा फसलुल विलायती, तो विलायत की जो फसल है, फकद नस्सफी ही अला कौली अबी यूसुफ रहमहुल्लाह, तो तहकीक इसके अंदर साहिब कुदूरी ने तसरीह कर दी है इमाम अबू यूसुफ रहमला के कौल पर, वह हुआ कौलु हिलाल रहमहुल्लाह ताला अईजा, और यह हिलाल रहमहुल्लाह का कौल भी है, वह हुआ जाहिरुल मजहबी, और यही जाहिर मजहब भी है, यही अहनाफ का जाहिर मजहब भी है कि वाकिफ वक्फ की विलायत अपने लिए भी रख सकता है। तो कहते हैं वह हुआ जाहिरुल मजहबी, और यही जाहिर मजहब है, वदा करा हिलाल उनफी वक्फी ही, और हिलाल रहमहुल्ला ने अपनी किताबुल वक्फ में जिक्र किया है, इन्होंने अपनी किताबुल वक्फ में जिक्र किया है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वज़ाकारा हिलाल उन, और हिलाल रहमहुल्ला ने जिक्र फरमाया है, फी वक्फी ही, अपनी किताबुल वक्फ में, वकाल अकवामुन, ये अब उनका कौल जिक्र कर रहे हैं जो हिलाल रहमहुल्ला ने अपनी किताबुल वक्फ में जिक्र फरमाया है। कहते हैं वकाल अकवामुन, हिलाल रहमहुल्ला फरमाते हैं वकाल अकवामुन, के कुछ लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा, मुराद फुकाहा हैं, लेकिन नाम नहीं जिक्र किया कि इसे कौन मुराद हैं। तो हिलाल राई रहमहुल्ला फरमाते हैं वकाल अकवामुन, और बाज फुकाहा ने कहा है इंशारतल वाकिफुल विलायत अली नफसी ही, अगर वाकिफ ने वक्फ की विलायत की अपने लिए शर्त लगा दी, कानत लहू, तो ये विलायत उसी के लिए होगी, व इल्लम यश्तरित, और अगर वाकिफ ने यह शर्त न लगाई, लम तकुन लहू विलायतुन, तो फिर वाकिफ के लिए वक्फ की विलायत नहीं होगी। यहां तक कौल है हिलाल राई रहमहुल्ला का। वो फरमाते हैं कि बास फुकहा फरमाते हैं कि वाकिफ ने अगर वक्फ की विलायत की शर्त अपने लिए लगा दी तो इसको विलायत रहेगी, और अगर अपने लिए विलायत की शर्त न लगाई तो फिर इसको वक्फ की विलायत नहीं होगी। आगे फिर फुकहा फरमाते हैं कि ज्यादा मुनासिब यही मालूम होता है ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का कौल हो, इसलिए क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ का मुतवल्ली के कब्जे में देना शर्त है, और जब मुतवल्ली के कब्जे में देगा तो वाकिफ की विलायत खत्म हो जाएगी, इल्ला ये के वाकिफ अपने लिए विलायत की शर्त लगा दे, फिर इसको विलायत रहेगी, वरना तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जब मुतवल्ली कब्जा करेगा तो वाकिफ की विलायत खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं काला मशाइखुना, हमारे फुकाहा फरमाते हैं अल अशबहु, अल अशबह का तर्जमा कर लें ज्यादा मुनासिब के भाई, तो हमारे फुकहा फरमाते हैं अल अशबहू के ज्यादा मुनासिब यही है अय्यकून हादा कौल मुहम्मदिन रहमहुल्ला कि यह इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला का कौल हो। यह जो हिलाल रहमहुल्ला ने जिक्र फरमाया है यह ज्यादा मुनासिब यह है कि इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला का कौल हो लिअन्न मिन असलिही इसलिए क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के ज़ाबते में से है कि अन्न तस्लीम इलल क़य्यिम शर्तुन क़य्यिम कहते हैं निगरान और जिम्मेदार को तो कहते हैं लिअन्न मिन असलिही इसलिए क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के ज़ाबते में से है कि अन्न तस्लीम इलल क़य्यिम शर्तुन के निगरान के सुपुर्द करना शर्त है लिसिहतिल वक्फी वक्फ के सही होने के लिए फ़इदा सल्लमा तो जब वाकिफ ने निगरान के सुपुर्द कर दिया लम यबका लहू विलायतुन फीही तो वाकिफ की उसमें कोई विलायत बाकी न रही इल्ला ये कि उसने अपने लिए शर्त लगाई हो गई तो फिर वाकिफ की विलायत रहेगी इसलिए क्योंकि वक्फ के अंदर शर्तों की रियायत रखी जाती है अगर अपने लिए विलायत की शर्त लगाई है तो फिर वाकिफ को विलायत रहेगी भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए वलना अब हमारी दलील आ गई। बतलाया था इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह के नजदीक अपने लिए विलायत की शर्त लगाना जायज है और यही कौल है हिलाल रहमहुल्लाह का और यही जाहिर मजहब भी है यानी अहनाफ का जाहिर मजहब यही है। अब उसकी दलील जिक्र कर रहे हैं वलना और हमारी दलील यह है कि अन्नल मुतवल्ली इन्नमा यस्तफीदुल विलायत मिन जिहती ही बिशर्ती ही भाई दलील समझ लें। इधर देखिए भाई हम कहते हैं कि ये जो मुतवल्ली को वक्फ की विलायत मिलती है ये वाकिफ की तरफ से मिलती है वाकिफ इसको मुतवल्ली बनाता है वो इसको विलायत देता है तो ये बात महाल है कि मुतवल्ली को तो विलायत वाकिफ से मिल रही है और वाकिफ खुद विलायत नहीं रख सकता लिहाजा कहना पड़ेगा कि वाकिफ भी विलायत रख सकता है भाई। तो कहते हैं वलाना हमारी दलील यह है कि अन्नल मुतवल्लिया के मुतवल्ली जो है इन नमा यस्तफीदुल विलायता वो विलायत हासिल करता है मुतवल्ली जो है वो विलायत हासिल करता है मीन जिहती ही वाकिफ की तरफ से बिशर्ती ही उसकी शर्त के साथ। इधर देखिए मैंने अपना बाग वक्फ किया और मुतवल्ली के हवाले कर दिया तो मुतवल्ली को अब इस बाग पर विलायत हासिल हो गई लेकिन शर्त मुतवल्ली की चलेगी या वाकिफ की उस वक्फ की आमदनी कहां खर्च करनी है यह शर्त मुतवल्ली लगाएगा या वाकिफ लगाएगा। वाकिफ लगाएगा तो मुतवल्ली को बेशक विलायत मिली है लेकिन वाकिफ की शर्त के साथ विलायत मिली है वाकिफ की शर्त का उसे ख्याल रखना पड़ेगा तो जब मुतवल्ली को वाकिफ की तरफ से ही विलायत मिली है तो कहना पड़ेगा कि वाकिफ को भी विलायत हासिल है वरना यह कैसे हो सकता है कि एक शख्स से दूसरा तो विलायत हासिल कर रहा है लेकिन खुद उसको विलायत नहीं है ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो वलाना हमारी दलील यह है अन्नल मुतवल्लिया के मुतवल्ली जो है इन नमा यस्तफीदुल विलायता वो विलायत हासिल करता है मिन जिहती ही वाकिफ की जानिब से बिशर्ती ही उसकी शर्त के साथ फयस्तहीलु अल्ला यकून लहुल विलायतु तो यह बात महाल है कि वाकिफ के लिए तो विलायत ना हो वगैरुहु यस्तफीदुल विलायतु मिनहु और गैर जो है वो इससे विलायत हासिल कर रहे हैं वाकिफ को खुद तो विलायत नहीं और गैर इसे विलायत हासिल कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता भाई। बात समझ में आ गई। वली अन्नहु अक्रबुन नास इला हादल वक्फी और इसलिए क्योंकि जो वाकिफ है वो लोगों में सबसे ज्यादा करीब है इस वक्फ के फयकून औला लि विलायती ही तो वो ज्यादा लायक है इसकी विलायत के कमन इत्तखदा मस्जिदन जैसे किसी ने कोई मस्जिद बनाई यकून औला बि इमारती ही तो वो तामीर करवाने वाला ज्यादा लायक है उसकी तामीर और मुरम्मत का व नस्बिल मुअज्जिनी फीही और उसमें मुअज्जिन मुकर्रर करने का जिसने मस्जिद बनवाई है वो इस मस्जिद की तामीर और मुरम्मत और मुअज्जिन मुकर्रर करने का ज्यादा हकदार है वकमन आतका अबदन और जैसे कोई गुलाम को आजाद करे कान अल वला उलहू तो उस गुलाम की मीरास जो है उसी आजाद करने वाले के लिए होती है। मैंने आपको बतलाया था वला जो है माले मीरास को कहते हैं आपने पढ़ा है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए तो उसके माल में से सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा और फिर उसके बाद उसके कर्जे अदा किए जाएंगे और फिर जो बाकी माल बच जाए उसके सुलुस के अंदर अगर उसने कोई वसीयत की है वो نافذ کی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثوں کو دیں گے اور وارث بھی کئی قسم کے ہیں بھائی. سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیں گے, وہ وارث جن کے باقاعدہ قرآن اور حدیث میں حصے مقرر ہیں, کسی کو نصف دینا ہے, کسی کو ثلث دینا ہے, کسی کو سدس دینا ہے, یہ ہیں ذوی الفروض یعنی حصوں والے. تو پہلے ان میں تقسیم کریں گے, پھر اگر مال بچ گیا تو پھر جو عصبات ہیں یعنی وہ مرد کے میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے, جیسے اپنے بیٹے ہیں, پوتے پڑپوتے ہیں نیچے تک بھائی, یا اوپر کی طرف باپ دادا پر دادا وغیرہ ہیں, توجہ ہے, یہ سارے عصبات ہیں. تو پہلے ذوی الفروض کو دیں گے ان کا حصہ, پھر جو مال بچ جائے گا وہ عصبات لے جائیں گے. تو اگر عصبات نہ ہوئے تو پھر اس کے بعد تیسرا درجہ وارثوں کے اندر وہ اس معتق کا ہے. اگر یہ میت کسی زمانے میں غلام تھی اور کسی نے اس کو آزاد کیا تھا تو پھر اگر یہ مال بچ گیا ہے تو تیسرے نمبر پر یہ معتق آئے گا اور اس کو وہ مال دے دیا جائے گا, اور اس مال کو ولا کہتے ہیں. یہ جو معتق کو مال میراث ملا ہے اپنے آزاد کردہ غلام یا باندی کا, اس کو ولا کہتے ہیں, کیونکہ معتق اس غلام یا باندی کے سب سے قریب تھا, اس نے اس کو آزاد کیا تھا, تو لہذا ولا اور میراث کا بھی وہی مستحق ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں وکمن اعتق عبدا, اور جیسے کوئی شخص غلام کو آزاد کرے, کان الولاء لہ, تو ولا اسی آزاد کرنے والے کے لیے ہوتی ہے, لانہ اقرب الناس الیہ, اس لیے کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہے اس آزاد کیے ہوئے غلام کے. ولو ان الواقف شرط ولایته لنفسه, ادھر دیکھیے بھائی, صورت یہ ہے کہ واقف نے وقف کی ولایت اپنے لیے رکھ لی کہ میں اس کے متولی ہوں گا, لیکن وہ واقف ایسا ہے کہ اس کی ذات پر اطمینان نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو ابھی تو اس نے وقف کیا ہے بعد میں سارے پر خود ہی قبضہ کر لے, بعد میں اس پر قبضہ کر لے اور فقراء وغیرہ پر پھر خرچ ہی نہ کرے. تو کہتے ہیں اگر واقف اس قسم کا آدمی ہے تو پھر قاضی اس وقف کو اس سے لے لے گا اور کسی قابل اعتماد شخص کے سپرد کر دے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ولو ان الواقف شرط ولایته لنفسه, اور اگر وقف کرنے والے نے وقف کی ولایت کی شرط اپنے لیے لگا دی, وکان الواقف غیر مامون على الوقف, اور وقف کرنے والا جو ہے وہ غیر مامون ہے وقف پر, یعنی اس پر اطمینان نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت اس نے وقف تو کیا تھا لیکن دوسرے وقت اس کی نیت خراب ہو جائے اور وہ پھر فقراء پر خرچ ہی نہ کرے, پورے وقت پر ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائے, تو پھر قاضی اس سے لے لے گا. تو کہتے ہیں وکان الواقف غیر مامون علی نفسہ, اور وہ جو وقف کرنے والا ہے وہ وقف پر مامون نہیں ہے, یعنی اس پر اطمینان نہیں ہے, فللقاضی, تو قاضی کے لیے جائز ہے, ان ینزعہا من یدہ, کہ وہ وقف کو لے لے اس کے قبضے سے, نظرا للفقراء, فقراء کی رعایت کرتے ہوئے, فقراء کے رعایت کرتے ہوئے تاکہ فقراء کو یہ مال ملتا رہے, کما لہ ان یخرج الوصی یا نظرا للصغار. بھئی صورت یہ ہے, کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص مرنے لگا اور اس کے نابالغ بچے ہیں تو اس نے اپنے مال کا نگران ایک شخص کو مقرر کر دیا, اس کو وصی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وصی. یہ جو مرنے والا شخص اپنے مال کا نگران کسی کو بنا جائے اس کو وصی کہتے ہیں. تو ایک شخص مر گیا اور اس کے نابالغ اولاد ہے اور اس نے ایک آدمی کو وصی مقرر کر دیا کہ میرے اس مال کا خیال رکھنا اور میرے بچوں پر خرچ کرنا اور جب بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے حوالے کر دینا. تو اب یہ جو وصی ہے یہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے, تو قاضی کے لیے جائز ہے وہ اس وصی سے مال لے کر کسی دوسرے کو وصی مقرر کر دے. بھائی تو کہتے ہیں کما لہو ان یخرج الوصیہ, جیسے کہ قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ وصی کو نکال دے, نظرا للصغاری, نابالغوں پر شفقت کرتے ہوئے, یا یوں کو نظرا للصغاری, نابالغوں کی رعایت رکھتے ہوئے, وکذا اذا شارتا. دوسری صورت بھائی ایک آدمی نے اپنا باغ وقف کر دیا کہ میں اپنا یہ باغ وقف کرتا ہوں, اس کی آمدنی آئندہ فقراء پر خرچ کی جائے, لیکن اس کا متولی میں خود ہوں گا, اور اس آدمی کو پتا تھا کہ مجھے قاضی یا بادشاہ کہیں ایسا نہ ہو اس ولایت سے ہٹا نہ دے, تو اس نے شرط اسی وقت شرط لگا دی کہ میں یہ باغ وقف کرتا ہوں, اس کی آمدنی فقراء پر خرچ کی جائے گی اور میں خود اس کا متولی ہوں گا, اور اگر قاضی یا بادشاہ بھی مجھے اس ولایت سے ہٹانا چاہے تو وہ مجھے نہیں ہٹا سکتا, उसने वक्फ के अंदर शर्त लगा दी, और आप जानते हैं कि वक्फ के अंदर शर्तों की रियायत रखी जाती है। तो क्या आप काजी इसको हटा सकता है या नहीं? कहते हैं भाई अगर ये ऐसा आदमी है जो काबिले एतमाद नहीं है तो फिर काजी इसको हटा सकता है, और इसने जो शर्त लगाई थी उसका कोई एतबार नहीं, क्योंकि उसने ऐसी शर्त लगाई है जो शरीयत के हुक्म के मुखालिफ है। शरीयत ने तो काजी को इख्तियार दिया था, ये उस काजी के इख्तियार को खत्म करना चाहता है, लिहाजा इसकी ये शर्त सही नहीं है। तो कहते हैं वकदा ईदा शराता, और इसी तरह अगर वाकिफ ने शर्त लगा दी अल्लैसा लिसुल्तानी वला लिकाजिन कि जायज नहीं है बादशाह के लिए या किसी काजी के लिए अन युखरिजहा मिन यदिही कि वो इस वक्त को निकाल दे उसके कब्जे से व युवलियहा गैरहू और दूसरे को इसका मुतवल्ली बना दे, ये शर्त उसने लगा दी कि ये बादशाह और काजी को यह हक नहीं है कि मुझे निकाल दे और किसी दूसरे को मुतवल्ली बना दे। तो कहते हैं यह शर्त भी सही नहीं है। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, वह काजा और इसी तरह है, यानी काजी के लिए जायज है इस वाकिफ को निकालना, इसी तरह है जैसे ऊपर पीछे मसला गुजरा कि जैसे पिछले मसले में था कि अगर वाकिफ काबिले एतमाद नहीं है तो काजी उसे हटा सकता है, तो इस मसले में भी इसी तरह है, अगर वाकिफ ये शर्त लगा दे फिर भी काजी उसे हटा सकता है। तो कहते हैं वकादा और इसी तरह है हुक्म, यानी काजी इस वाकिफ को हटा सकता है इदा शारता जब वाकिफ ने यह शर्त लगा दी अल्लैसा लिसुल्तानी वला लिकाजिन कि जायज नहीं है किसी बादशाह और किसी काजी के लिए अन युखरिजहा मिन यदिही कि वो वक्फ को उसके कब्जे से निकाल दे वही लिहा गई रहू और दूसरे को उसका मुतवल्ली बना दे तो भी काजी उसको निकाल सकता है। ले अनहु शर्त मुखालिफुन लिहुक्म शरई, इसलिए क्योंकि ऐसी शर्त है जो शरीयत के हुक्म के मुखालिफ है, फाबा ताला तो यह शर्त बातिल होगी, इसका कोई एतबार नहीं होगा। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई हादा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।